آداب عرض ہیں، السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، خاص کر ہم نے آپ کو ہفتے کے دن تنگ کیا۔ پروگرام سے متعلق میں عرض کرتا چلوں کہ پروگرام کی ترتیب یوں ہے کہ مہمان کے تعارف کے بعد ہم کچھ چند سوالات ہیں جو موضوع سے ہی متعلق ہیں، وہ ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے، ان کے جوابات چاہیں گے ان سے، اور اس کے بعد ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ کچھ کہانیاں جو ہیں موضوع سے متعلق وہ ہمیں سنائیں، اور اس سے متعلق جو ریلیونٹ گفتگو ہے وہ ہم چاہیں گے وہ کریں۔ میری خواہش یہ ہوگی کہ مہمان جو ہیں وہ اگر اپنے ادبی سفر پہ خود روشنی ڈالیں تو یہ بہت موضوع ہوگا۔ میں معذرت خواہوں اگر تعارف میں کچھ کمی کجی مجھ سے رہ جائے، لیکن کیونکہ ایک ہمہ جہت شخصیت کا تعارف کروانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے۔ یہاں سے شروع کیا جائے کہ وہ پی ایف میں گئے، یہاں سے کہ وہ ایک سیاچن میں ان کی پوسٹنگ رہی، پنواکل میں بھی ان کی پوسٹنگ رہی، تو یہ میرے لیے خاصا مشکل تھا تعارف لکھنا اور اس سے متعلق گفتگو کرنا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ بوجھ بھی ان پہ ڈال دیا جائے، کتاب لکھی ہے کم از کم اتنا تو خمیازہ آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو حسن معراج صاحب سے میرا تعارف ایک کہانی کار، ڈرامہ نگار اور داستان گو کی حیثیت سے ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی صرف ایک کتاب ہی منظر عام پہ آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی دو کتابیں ابھی تک منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب 2016 میں ریل کی سٹی کے نام سے پہلے آئی، اور پھر دوسری کتاب بیونڈ ڈگری آف سیپریشن کے نام سے 2017 میں غالباً منظر عام پہ آئی۔ اس کے علاوہ غالباً پہلے یہ ڈان میں جو انگریزی قارئین ہیں اس کے لیے لکھتے رہے، اور پھر مجھے ان کا بہت کچھ سننے کا، ان کے انٹرویوز اور ان کی اپنی پڑھی ہوئی تحریریں سننے کا بہت اتفاق ہوا۔ ریل کی سٹی کا تعارف میں چاہوں گا کہ ہم جب کہانیاں سنیں تو اس وقت کروایا جائے۔ میرے پاس اس تعارف میں اتنا ہی تھا، میں چاہوں گا کہ مہمان اگر اپنے ادبی سفر پہ خود روشنی ڈال دیں تو وہ زیادہ موضوع ہوگا، اس سے یہ نہ ہو کہ میں کوئی گستاخی کا مرتکب ہوں۔ آپ اگر
السلام علیکم جی، میرا نام محمد حسن معراج ہے، نام تو آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ باقی انہوں نے ادبی سفر کا ذکر کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ اتنا کچھ لکھا نہیں ہے، نہ ہی یہ بھاری پتھر ہے کب یہ مجھ ناتا وہاں سے اٹھتا ہے۔ مجھ سے پہلے بہت لوگوں نے بہت اچھا لکھا ہے، اور میں نے یقین جانیے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ میں کوئی ایسا ایفرٹ بھی کروں، کیونکہ یہ راہ ایسی ہے، مطلب اب صہیب مغیرہ صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ میں، مجھے نہیں لگتا کہ، ہاں یہ ہے اس ساری چیز کے پیچھے کہانیاں کہنے اور کہانیاں سننے کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ نشہ ہے، یا شاید ایک طبیعت ہے یا فطرت ہے، اور اس کی مجھے گاہے گاہے اس کی مجھے لوگوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ لائن تمہاری ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے یاد آ رہے ہیں لاہور میں، وہ کافی اعلیٰ عہدے پہ متمکن ہیں ایک صاحب، وہ فوج میں میرے کمانڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے میری اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں لکھا کہ دی اونلی بیڈ تھنگ اباؤٹ ہیم از دیٹ ہی از لانگ وائنڈیڈ، کہ لمبی بات کرتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کے ساتھ میں سمپتھائز کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اگلے گھنٹہ ڈیڑھ تک سنیں گے، ورنہ یہ ہے کہ میں، میرا خیال ہے کہ تھوڑی زود گوئی جو ہے وہ اس کا ایک عنصر ہے۔ بہت مختصر، بہت مصدق سامل ایک ہمارے دوست تھے، اور صرف ہمارے دوست نہیں تھے، ایک سنسکرت کا لفظ ہے، گنوت تھے، بہت گن تھے ان میں، بہت گنی آدمی تھے۔ لاہور پہنچے ملتان سے اٹھ کے، اور وہ ایک شعر ہے، ہم مضافات سے آئے ہوئے لوگوں کا میاں، مسئلہ رزق کا ہوتا ہے محبت کا نہیں۔ مصدق سامل ملتان میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد گھومتے گھامتے نیشنل کالج آف آرٹس پہنچ گئے۔ بڑا اچھا دور تھا یہ، اس ملک میں ایک ایسی تاریخی مسلط تھی جو اپنے آپ کو روشنی کہلانے پہ بزد تھی۔ سو جب اس دوران این سی اے کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش ہوئی، تو اس میں ایک احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کے نتیجے مصدق کی ایک آنکھ چلی گئی۔ مصدق نے لاہور میں جتنا وقت گزارا، ہی میڈ شور کہ وہ اس وقت کا ایک آپٹیمل یوز کرے، اور اس نے پکا گانا سیکھا استاد سے۔ اور بہرحال یہ تو مصدق کا بہت ہی لمبا تعارف ہے، اور یہ میری ہے خوش قسمتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو جسٹس ود ہم، دا کائنڈ آف پرسن ہی واز۔ ہی لیفٹ اس ان 2014، وی لاسٹ ہم ٹو کینسر، اور لیکن مصدق کو کسی نے میری ایک تحریر بھیجی تھی، شرجیل بلوچ، وہ تازیہ پہ لکھی ہوئی میری پہلی تحریر تھی، اور مصدق نے کہا اس کے بعد کہ تمہارے پاس لکھنے کو کچھ اور ہے. میرے پاس کچھ سفر کے دوران لکھے ہوئے شارٹ نوٹس تھے, وہ میں نے ان سے شیئر کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ لکھنا شروع کر دو. یوں یہ ریل کا سفر شروع ہوا اور یہ تو میرا خیال ہے اب کافی ویڈیوز میں آ گیا, اب یہ کیچ ورڈ بن گیا کہ حسن بھائی تو ہیش ٹیگ کریں تو یہ نکل آتا ہے. سو ایسے یہ کہانیاں لکھی گئیں اور اس سلسلے میں میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کمان اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا, جہاں پہ میں ایک پروفیشنل کورس کر رہا تھا اور اس میں ایک لگی بندی روٹین تھی. سو اس ایک سال میں میں نے یہ کتاب جو تھی یہ کتاب کے طور پہ نہیں لکھی گئی, یہ ایک بالکل جو ہفتہ وار چھپتے ہیں آرٹیکل وہ تھے. ان میں کسی قسم کی ادب کی خدمت وغیرہ وغیرہ وہ کچھ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ فوج میں ایک سٹرکچر ہے فوج کا, بڑی خوبصورتی ہے, وہ یہ ہے کہ, اور یہ صرف ایک فوج میں نہیں ہے, دنیا کی ہر فوج میں ہے, ایک فرد کو یہ احساس دلا دینا کہ تم قیمتی نہیں ہو. وہ نظریہ اور وہ ایک امیجنڈ نیریٹو جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے. اب بظاہر یہ بڑی اچھی بات ہے کسی بھی غیر مرئی چیز کے اوپر ایک جیتے جاگتے انسان کو منیمائز کر دینا یا ریڈیوس کر دینا, بہت اچھی بات ہے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں, ایسے ہی ہم لوگوں نے پچھلے اس گولے پہ جو 10-12 ہزار سال گزارے ہیں وہ اسی چکر میں گزار دی. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ بہتر ہے, یہ نظریہ بہتر ہے وغیرہ وغیرہ. سو یہ چیز جب ریڈیوس ہو کے آتی ہے بہت منیمل لیول پہ تو یہ اور طرح سے رنگ دکھاتی ہے. یہ رنگ کیسے دکھاتی ہے کہ جب آپ ایک فرد کو کہہ دیتے کہ تمہاری جان قیمتی نہیں ہے, یہ ایک غیر مرئی نظریہ یا عقیدہ زیادہ قیمتی ہے, تو پھر اس فرد کا جو وقت ہے یا اس فرد کی جو انفرادیت ہے وہ اپنی اہمیت نہیں رکھتی. سو پھر اگر آپ یہ کہیں گے یار میرا وقت زیادہ قیمتی ہو گیا, دین نو, یور ٹائم از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از دس کنٹری, دس بارڈر, دس آئیڈیالوجی اور وٹ ایور. سو اور میرے اور آپ کے درمیان جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے. آپ ہر چیز کا دام لگا سکتے ہیں, مول لگا سکتے ہیں, اس کے اتنے پیسے لے لو, بٹ وٹ یو کین ناٹ پے می بیک از مائی ٹائم. بھلے میں اس کو کسی بھی طرح کسی ٹریفک کے سگنل پہ مطلب بالکل کوہنیاں کھجاتے ہوئے ضائع کر دوں, لیکن وہ میرا وقت ہے, اس کے اوپر میرا استحقاق ہے, میں طے کروں گا کہ وہ کیسے گزرے گا. تو یہ اسٹاف کالج میں یہ تھا معاملہ کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی تمہارا جو بھی وقت ہے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا قیمتی یہ بات ہے کہ تم نے 7:20 پہ اس بغلی دروازے سے اندر داخل ہو جانا ہے اور یہ ہولیا ہوگا. اس ساری چیز سے نکلنے کے لیے میں نے لکھنا شروع کیا اور وہ اور مجھے بڑی تسلی ہوتی تھی اس چیز کی. میں لکھتا تھا, مثال کے طور پہ میں نے منڈی ڈھابا سنگھ کے بارے میں لکھا, اور یہ تھوڑا پرانا وقت ہے, 2012 کی میں بات کر رہا ہوں. ایک سردار مہندر سنگھ گلاٹی صاحب ان کا نام تھا, 92 سال ان کی عمر تھی, فون پہ وہ صحیح سے بات نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے کال ملائی اور کال ملا کے دوسرے سرے پہ وہ سین فرانسسکو یا سین ہوسے سے تھے, وہ رونا شروع ہو گئے. انہوں نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا, کہتے ہیں مراد صاحب ہن وی نو منڈی ڈھابا سنگھ ہی آخ دن ہے. اب میں انہیں کیا بتاتا کہ بھائی اس کا نام ہم نے بدل دیا ہے, وی ہیو ہم نے اسے صفدر آباد کر دیا ہے. تو اب یہ جو چیزیں تھیں یہ بعد میں جڑتی گئیں کہانیاں اور اب یہ کتاب کی صورت میں آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ اسے پڑھیں. جہاں تک بات ہے کہانیوں کی تو ان کا جو ایکسپانس ہے وہ بہت بڑا ہے, اس کی کامنالٹی جو ہے وہ بہت دور سے شروع ہوتی ہے. کتاب ہے بیتال 25, وہ اگر آپ میں سے کسی کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ جب وہ پڑھیں, اور وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اور پریزاد تک آتی ہے. ٹھیک ہے, پریزاد میں یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہ جس کے پاس اینٹائی ہیرو ہونے کی ساری چیزیں ہیں, اور اس کا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ وہ لائل تھا ایک بڑے آدمی کے ساتھ. سو جس معاشرے میں یہ کہانی پنپ رہی ہے اور لوگ لائکس دے رہے ہیں, انسٹا پہ دل مل رہے ہیں علی احمد صاحب کو اور ہاشم ندیم صاحب کو, بہت اچھی کہانی کہی انہوں نے, لیکن جو چیز اس ایک اس قوم کے ساتھ کلک کر گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کام وام نہیں کرنا, کام جوان کی موت ہے. ٹھیک ہے, زیادہ ضروری یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا کانٹا فٹ کر لو. ٹھیک ہے, اور ساری جو چیزیں جو دنیا میں کامیاب کرتی ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے پیچھے لے کے جانا چاہوں تو آپ میں سے جس کسی نے حاتم طائی کا قصہ پڑھ رکھا ہے, ٹھیک ہے, उसमें अगर आपको याद हो मुनीर शामी जो है वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बताता है, वो कहता है कि भाई ये खातून है इस मुझे इससे मिलवा दो, और हातिम ताई जो है वो 7 शरायत हैं वो पूरी करता है, वो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़ी जान जोखम में डालता है, और वो मतलब कोहे निदा की तरफ जाता है कभी, और कभी एक दफ़ा देखा है दूसरी दफ़ा देखने की हवस बाकी है, इस पूरे उकदे को हल करता है। और जब वो उस खातून तक पहुंच जाता है तो वो खातून लेके मुनीर शामी के हवाले कर देता है। ठीक है, अब आप परिजात का सेकंड लास्ट एपिसोड देखें, आपको समझ आती है कि वो जो खातून है जो उसका मुजस्मा बनाती है जिसकी बिनाई नहीं है, वो उस खातून के लिए सब कुछ करता है और वो उसको देता है। ये ऐसा क्यों होता है? एक कहानी जो जिसके दरमियान इतना मतलब कहने वाला जो है वो उज्जैन नगर से उठता है और विक्रमा ये बेताल पच्चीसी लिखता है और हाशिम नदीम साहब कोयटा में रहते हैं, ठीक है, कहाँ से कहानी चलती है, कहाँ कहानी आती है, इसका सफ़र इतना तवील और इतना पुरपेच है जिसके दरमियान कई ज़माने गुजरते हैं, कई मकान गुजर गए हैं, ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हरारी लिखता है कि हमारे सर्वाइव करने में जो एक तो हमारी इच्छा है कि हम जिंदा रहें, ख्वाहिश है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम बिल्कुल बात करने के माहिर हैं। हमसे पहले जो लोग थे जैसे बंदर जो थे, वो अगर दक्षिण की जानिब से शेरों का एक ग्रोह आते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ गोगया सकते हैं, शोर मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम तक जब बात पहुंचती है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 6 शेर हैं, इनमें से एक ज़्यादा भूखा, हम बात को नरेट कर सकते हैं, ठीक है, और जब ये बात नरेशन में ढलती है तो ये कितना रंग बदलती है, और जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुंतकिल होती है तो कितने रंग बदलती। लेकिन इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आता है वो ये कॉमनैलिटीज़ एक्सप्लोर करने में आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज मेरी मुलाकात एक साहब से हुई है, जवाद साहब से, और मुझे याद आ रहा है कि इनके साथ जब मेरी पिछली नशिस्त हुई थी उसमें हमने शोरबा पे गुफ्तगू की थी। तारीख का सितम यह है कि ये गुफ्तगू मैकडॉनल्ड्स में हो रही थी। और एक और हमारे बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, उनका नाम है ज़फ़रुल्ला यदबैज़ा के नाम से वो जाने जाते हैं, तो मैं यदबैज़ा और जवाद भाई थे, हम मैकडॉनल्ड्स में बैठे थे और हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि दुनिया कैसे एक ही तरह का बर्गर पहन के, एक ही तरह की जीन्स और पहन के खुश होती है, हालांकि कुछ शायरों को इस पर इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि पहनो अच्छी लगती है, लेकिन गुफ्तगू जो थी वो शोरबा पे हो रही थी। और वो एक बहुत, जैसे आसिम बख्शी साहब फ़लसफे की जो बहुत अधिक गुत्थियाँ हैं उनको बहुत सिंप्लीफाई करके कॉफ़ी के एक मग पे आपको समझाते हैं, तो ज़फ़र साहब ने मेरी ये रहनुमाई की उसमें, आप शोरबा एक लफ्ज़ है, जब ये हम लोग चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, आपके बाद अगली पीढ़ी आएगी, नूडल्स वाली पीढ़ी आएगी, उसके बाद पास्ता वाली पीढ़ी आएगी, ठीक है,
अभी तो करी वाली चल,
करी वाली चल, ये जब चले जाएंगे तो ये एक दिन पुरानी जो है वो किताबें खोलेंगे और शोरबा देखेंगे कि शोरबा क्या होता है। अब शोरबा जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, शोर और बाह, शोर यानी कि नमक और बाह यानी कि पानी, यानी कि नमक वाला पानी। और वो क्या करेंगे कि वो अपने सामने जो है एक बीकर में पानी डालेंगे, उसमें नमक डाल के कहेंगे कि ये शोरबा, ठीक है। अब बताइए शोरबे का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू होता है? पहले प्याज जो है उनको बादामी रंग का, पिस्तई रंग का किया जाता है, उसके बाद उसमें मसाले डाले जाते हैं, जब तेल जो है वो छोड़ देता है सारा मसाला, तब आप उसमें पानी डालते हैं और एक कंसिस्टेंसी, और जब ये खाना पक रहा है साथ एक यादों की मजलिस है जो आबाद हो रही है, ठीक है। सो इस शोरबे का उस शोरबे से कितना ताल्लुक रह जाएगा, ठीक है, और ये आने वाले लोग अंदाज़ा लगाएंगे और उनके पास अंदाज़ा, जैसे मैं कहा करता था कि बहुत सालों के बाद, कुछ हज़ार सदियां गुजरने के बाद, जब हम कोई बहुत अगली पीढ़ी आएगी और वो डिस्कवर करेगी, हमें देखेगी, हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस निकाल के देखेगी और उनके ज़रिए अंदाज़ा लगाएगी कि भाई ये तो बड़े कमाल के लोग थे, उनको ये नहीं पता कि हमने जितनी जंगें लड़नी थी हमने सिर्फ पावर पॉइंट पर लड़ी हैं, हमारे सारे डिज़ाइन सारे प्रपोजल बस पावर पॉइंट तक रहे हैं और उसके बाद आगे नहीं गए। सो ये जो है मुझे ये चीज़ बहुत मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत दुल्ला भट्टी के सिलसिले में मैं कुछ लिख रहा था तो दुल्ला भट्टी की जो पहली कहानी मेरे पास आई वो ये थी कि एक आदमी है पंजाब का, वस्ती पंजाब का, और वो मट्टी की एक मचान पे खड़ा होकर ये कहता है कि किधर अकबर बुलाओ उसे, पहुंचा नहीं वो अभी तक। और पंजाबी में ज़ाहिर है क्योंकि पंजाबी की जो गालियाँ हैं वो जेंडर वाइज बहुत इनकरेक्ट हैं, तो और मार्च का महीना भी आने वाला है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर. सो वो जितनी गालियाँ हैं माँ बहन की वो दे के कहता है कि बुलाओ अकबर को, अकबर क्यों नहीं आया. अब अकबर के जो मसाहब हैं, जो पंचहजारी सूबेदार वगैरह हैं, वो अकबर को जाके कम्युनिकेट करते हैं. अकबर महाबली है उस वक्त, हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत जो है वो अपनी जड़ पकड़ चुकी है. और अकबर सुनता है तो वो हंस देता है कि यार क्या. और जब उस आदमी को मचान से उतारते हैं या मट्टी की उस ढेरी से उतारते हैं तो वो आदमी माफ़ियाँ मांगने शुरू कर देता है कि भाईजान मैंने कुछ नहीं किया. तो अब ये फिर दोबारा सिलसिला शुरू होता है. जो मचान पर चढ़ता है तो वो एक और आदमी बन जाता है, ठीक है. जब वो मचान से उतरता है, उसे वीगो में डालते हैं, तो वो माफ़ियाँ मांगना शुरू हो जाते हैं. कहता है भाईजान वो सिर्फ एक फेसबुक मोमेंट था, मैंने ऐसे ही ट्वीट की थी, अल्लाह के साथ मेरा मतलब नहीं. अब ये जब सब हो रहा है तो अकबर जो है वो कहता है कि वो मट्टी लेके आओ जहाँ पे ये चढ़ता है. अकबर ने अपने दरबार में वो मट्टी मंगवाई. उस आदमी को जब वो मट्टी पे चढ़ाता था तो वो आदमी कहता था किधर है अकबर, बुलाओ उसे, ठीक है. जब वो मट्टी से उतरता था तो वो कहता था सरकार आप माई बाप हैं, आप जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं, ठीक है. और अब ये बात मैंने उस वक्त पढ़ी और मेरे जहन से हजफ हो गई. आजकल मेरे एक और मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सिंहासन बत्तीसी के नाम से. उसमें लिखा है कि उज्जैन नगर एक पुरानी रियासत थी, उसमें एक राजा राज करता था, राजा भोज थे शायद. और उनकी पहले बहुत नक्शा खींचा गया है, बिल्कुल वैसा नक्शा जैसा उस्मान मुजदार साहब के दफ्तर में होगा लाहौर का. बहुत बिल्कुल मेले वेले लगे हुए हैं और हर तरह का काम हो रहा है, दुकानें सजी हैं, बाजार हैं और पूरी रौनक रंग रास रंग लीला रची हुई है. शहर से बाहर एक आदमी जो है वो खीरे बेचता है, और खीरे ये मतलब वो ऑर्गेनिक फूड का फंडा अभी ऑन नहीं हुआ था, तो वो खीरे जो हैं वो बेचता, खीरे बेचता है. और खीरों की जब बेल चढ़ती है तो एक चौकोर आता है ज़मीन तक, वो उस एक स्क्वायर ऑफ लैंड में वो बेल जो है वो जड़ नहीं पकड़ती, बाकी हर जगह जाती है. वो बड़ा हैरान होता है और वो जब उस जगह पे पहुंचता है वो सोचता है कि मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ ताकि मैं ओवरसी करूँ, कोई और खीरे ना तोड़ के ले जाए. जब वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ खड़ा होकर वो कहता है कि बुलाओ किधर है राजा विक्रम, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, ठीक है. और हसबे साबिक राजा के जो सिपाही होते हैं वो उसे वीगो में डाल के ले जाते हैं और उसे मारपीट करते हैं, वो ठीक हो जाता है. फिर राजा कहता है कि ये जगह खुदवा. जब वो जगह खुदवाते हैं तो उसके नीचे से एक तख्त निकलता है. वो तख्त जो है उसके साथ उसके चार अतराफ आठ 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 पुतलियां लगी हैं. अब आप कहानी आपको देखें कैसे आपकी उंगली पकड़ के आपको एक रिवॉल्विंग डोर एक मेज में लेके जा रही. जब वो तख्त निकाला जाता है तो उसके 32 कुल पुतलियां हैं. और ये पुतलियां जो है इनका बयान बहुत खूबसूरत, इनके लिए जो लफ्ज़ है वो सुंदर से भी आगे का एक लफ्ज़ है, कि मतलब वो रूपमती, एक संस्कृत का लफ्ज़ है, वो रूपमती का लफ्ज़ है. इतनी खूबसूरत औरतें हैं वो, 32 हैं, आठ 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 आठ. राजा जब वो तख्त निकलवाता है तो वो तख्त निकलवा के वो पहले एक मुहूर्त निकलवाता है जिस दिन मैं इस तख्त पर बैठूंगा. वो जब उस तख्त पर चढ़ने लगता है तो पहली पुतली जो है उसमें हरकत होती है और वो कहती है कि तू रुक जा, तू जानता है कि तू किसके तख्त पर बैठने वाला है. फिर वो उसे कहानी सुनाती है. इस तरह वो 32 कहानियां उसे सुनाई जाती हैं जिनमें उसे 32 बादशाह की सिफात जो हैं वो गिनवाई जाती हैं कि वो कैसा सखी था और वो कैसा ज़बरदस्त आदमी था. लेकिन जो भी और ये अब आप देखें कि दुल्ला भट्टी की मट्टी उठाएं और सिंहासन बत्तीसी की मट्टी उठाएं, कहानियों का थ्रेड जो है वो एक है, ठीक है. परिजात में नुमान एजाज साहब की सखावत को देखें, ठीक है. और हातिम ताई में मुनीर शामी के साथ जो सलूक होता है वो देखें. और आप जब रियल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई बादशाह जो थे वो ऐसे हुआ करते थे. ऑब्वियसली मैं मतलब हमें, हम तक बादशाहों का एक रूप पहुंचता है. मतलब हम ये जानते हैं हेनरी 8 जो था वो बड़ा ज़ालिम आदमी था, उसने एन बोलीन से शादी की, उसने मैरी ऑफ एरकॉट, क्वीन ऑफ एरकॉट जो थी उसको वो कर दिया, उसने चर्च अपना डेवलप कर लिया. बट हो सकता है उसकी कोई पॉजिटिव सॉफ्ट साइड भी हो, जो यकीनन उसका ISPR कोशिश कर रहा होगा वाजी करने की, नॉट एज इफेक्टिव. अच्छा, सो बताने का मकसद ये है कि महाराजा रंजीत सिंह के जो वकाए निगार हैं वो लिखते हैं कि महाराजा एक जंगल से गुजर रहे थे और उनके माथे पे एक पत्थर लगा के शिकार खेल रहे थे. महाराजा को जब वो पत्थर वत्थर लगा तो उनके जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ थे वो एकदम जैसे आप लोगों के हैं माशाल्लाह, वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, उसी तरह के महाराजा के जो मसाहिब थे वो फौरन बाहर आए और उन्होंने वो अपनी तलवारें वगैरह निकाली नियाम से कि छोड़ेंगे नहीं पकड़ के। 5-7 मिनट में वो एक आदमी को पकड़ के ले आए, एक लकड़हारा था, उससे पूछा कि तुम ये तुमने महाराजा को पत्थर क्यों मारा। ये तो हम उर्दू में बात कर रहे हैं, पंजाबी में डायलॉग हुआ था। उसने कहा कि तू महाराजा ने वट्टा क्यों मारे वो, और मुसाहिब कहें कि छड़ना नहीं एदा घाटा ला दे, क्योंकि वो तो जाहिर थ्राइव करते हैं इस चीज़ पे कि लोग मरें, हिफाजत का और इनसिक्योरिटी का जो रिश्ता है वो बना रहे। सो वो बंदा आगे से एक लॉजिक देता है कि मैं सरकार माई बाप महाराजा नू मैं तो नहीं वट्टा मारे, मैं तो बेरी नू वट्टा मारे, तो कि बेर गिरेंगे मैं कुछ खा लूँगा। अब वो कहते हैं महाराजा की तरफ देख रहे हैं, कब महाराजा ऑर्डर करे कब हम इसकी गर्दन उतारें। तो महाराजा एक लम्हे को सोचता है और कहता है तू बेरी नू वट्टा मारे थे तेनू बेर लभण, तू महाराजा नू वट्टा मारे थे तेनू मौत, ये नहीं हो सकता, ये पूरा परगना इनू दे दियो। सो महाराजा वो पूरी जागीर जो है उसके हवाले कर देता है। अब आप सखावत का कॉमन फैक्टर देखें एंड इट्स कनेक्शन विद रॉयल्टी देखें, ठीक है। और ये सिर्फ वहाँ नहीं, ये मतलब अहले इक्तदार का एक पैटर्न होता है ये, ठीक है। आप अचानक सोशल मीडिया, अब ये काम सोशल मीडिया पे होता है, अचानक एक सोशल मीडिया पे वेव उठती है कि फलाना फनकार कितनी कसम पर्सी में है, वो 2 दिन बाद आप देखते हैं कोई स्टेट मिनिस्टर कोई फेडरल मिनिस्टर जो है वो उठ के उसके घर चला जाता है और उसको मतलब उसकी हेल्प करता है। सो सखावत एक कॉमन थ्रेड है। एक और थ्रेड जो मुझे कहानियों में नजर आया है वो है ट्रिवियलिटी टूवर्ड्स द एंड, कि जो अंत है वो कितना मीनिंगलेस है। और ये भी एक ऊपर से लेके नीचे, लेकिन इस दफा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है। वी ऑल मोर और लेस नो व्हाट इज हैपनिंग विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ, एक्स प्रेसिडेंट मुशर्रफ दीज डेज, ठीक है, कितनी ट्रिवियल बात है। और थोड़ा सा पीछे जाएं तो मिर्ज़ा जो है वो मिर्ज़ा की बहादुरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है मिर्ज़ा साहबा में, ठीक है। और वो एक जगह लिखा है कि जन्म देता माए बाप ने ते रूप देता करतार, वो मैं जब दी कि मैं जब से घोड़ी पे बैठा हूँ मेरा कंपिया नहीं गा शरीर, मेरा बदन जो है वो कभी कांपा नहीं है, ठीक है, वो मिर्ज़ा, ठीक है। और वो मेनू कद दी लोड़ चिड़ीक ने कि मैं मारा तेरे वीर, मिर्ज़ा साहबा है चूँकि एक रजमिया दास्तान है और उसमें मिर्ज़ा की बहादुरी का बहुत बयान है, लेकिन आप कभी ये देखें कि मिर्ज़ा मारा कहाँ जाता है। मिर्ज़ा मारा जाता है साहिबा के उन भाइयों के हाथ जिनके बारे में खुद कहानी के आगाज़ में लिख दिया गया है कि ये कायर थे, ठीक है, वीर शमीर जो थे ये बुजदिल थे, इनका स्किल सेट नहीं था, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको मज़ीद पीछे लेके जाता हूँ कि श्री कृष्ण जो हैं, जब उनको ये पता चलता है कि उनका अंत आ गया है और वो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में द्वारका की पूरी नगरी जो है वो जल रही है, ठीक है, और वो पानी जो है वो उठ रहा है, तो वो पूछते हैं कि भाई ये इंद्र से पूछते हैं ये हो क्या रहा है। उसने कहा भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सो श्री कृष्ण ये करते हैं कि वो वहाँ से उठते हैं और पास के एक जंगल में जाते हैं और हिरन की खाल ओढ़ देते हैं कि कहीं मौत मुझे ताक ना ले, ठीक है। और उस जंगल में पहली दफ़ा एक ऐसा शिकारी आता है जिसने कभी शिकार नहीं किया होता और वो पहला तीर चलाता है और उस पहले तीर से श्री कृष्ण जो है उनको वो तीर तराजू होता है, ठीक है। मरने से पहले वो पैगाम भिजवा देते हैं कि अर्जुन को कि तुम आओ और तुम द्वारका का पूरा निज़ाम संभालो। अर्जुन आता है, वो देखता है कि भाई ये तो मतलब सीन बैड है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो जितनी भी रानियां हैं उनको लेके चलता है और यहाँ पे पंजाब का बयान जो है उस मतलब आप देखें पंजाब का बयान उस वक्त कैसा है। लिखा ये हुआ है कि जब अर्जुन महारानियों को लेके चला तो 5 नदियों की सरजमीन पे उस पर किसी ने पहली दफा हमला किया, ठीक है। अच्छा, जब हमला होता है तो वो उसके पास एक धनुष नाम की एक कमान है जो कि उसके पास अवतार है, वो धनुष में तीर लगाता है और उसको ये उसके पास चमत्कार था या मौजूदा था कि वो जब भी तीर लगाएगा या तीर खींचेगा ही विल ऑलवेज हैव एन एक्सेस टू अनटैप्ड काउंटलेस एरोज। और वो तीर कमान जो है वो इतना भारी है कि 7 लोग उसे मिलके उठाते थे लेकिन अर्जुन उसे अकेला उठाता है। तो जब वो पहली दफ़ा तीर उठा के चलाने लगता है कमान तो उससे कमान खींची नहीं जाती, वो भी ऊपर देखते तो उसे पता लगता है कि भाई टाइम आ गया है तेरा। और वो भी ये रख देता है। सो बताने का मकसद ये है कि कहानियों में भी जब आदमी का वक्त आता है या जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है तो तब बहुत ये एक मामूली मामला रह जाता है कि उसे ख़त्म कैसे करना है। और ये हमने थ्रेड है, और ये सिर्फ 7 थीम हैं जिनके ऊपर दुनिया भर में कहानियाँ लिखी जाती हैं घूम फिर के। आजकल मैं जो कहानी पढ़ रहा हूँ वो क्लैन प्रदीप की कहानी, क्लैन प्रदीप एक किताब है, और रेल की सीटी और क्लैन प्रदीप में सिर्फ एक अच्छी चीज़ है, वो तो बहुत अच्छी किताब है। एक रेल की सीटी भी मेरी दादी के नाम मानून है, और क्लैन प्रदीप भी एक नानी ने लिखी है। मुखद्दा देवी एक खातून थी जो बंगाल से जिनका ताल्लुक़ था, और उनका नवासा था कल्याण, ठीक, कल्याण साहब जो थे कैप्टन कल्याण, ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही डिड हिज मेडिकल ट्रेनिंग फ्रॉम कैलकटा, और उसके बाद वो स्पेशलाइज करने लंदन गया। लिवरपूल से उसने ट्रेनिंग की और वर्ल्ड वॉर वन लग गई। जब वर्ल्ड वॉर वन लग गई तो बिकॉज ही वॉज इन इंडियन मेडिकल सर्विसेज परफोर्स ही वॉज टू गो एंड अटेंड टू द पेशेंट्स इन द फ्रंट लाइन, और वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसने अपने घर कुछ चिट्ठियाँ लिखी, और वो जो चिट्ठियाँ हैं उनको और पूरी फिर दादी ने बीच में अपना भी, उस नानी ने अपना भी नैरेटिव दिया हुआ। सो क्लैन प्रदीप उस किताब का नाम है। तो क्लैन जो है उसकी जिस दिन उसकी माँ का इंतकाल होता है, और जो लेटर्स की टाइमलाइन है वो बहुत मुख्तलिफ है, वो फरवरी में चिट्ठी लिखता है और अप्रैल में उसके घर पहुँचती है, नवंबर में उसकी माँ का इंतकाल होता है और उसे नहीं पता लगता मार्च तक, और मार्च तक ही कंटिन्यूज। लेकिन जब मार्च में उसको पता लगता है कि उसकी माँ मर गई है तो तकरीबन 15 या 20 दिनों में क्लैन का भी इंतकाल हो जाता है। और अब बज़ाहिर ये बड़ी छोटी सी और कोई इसमें वो इतना प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, लेकिन जुदाई एक कॉमन फैक्टर है। और जब वो क्लैन को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको टाइफॉइड होता है, आखिरी वक्त में वो सारी की सारी बंगाल फोकलोर्स को बंगाली ज़ुबान में रिसाइट कर रहा होता है, ठीक है। आप पूछेंगे कि इसका ताल्लुक दास्तान से क्या है? इसका ताल्लुक दास्तान से ये है कि ये सब जो था ये बसरा मेसोपोटामिया में हो रहा था, फुरात के किनारे हो रहा था। क्लैन ने जितना भी पढ़ रखा था मिडल ईस्ट के बारे में, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम एन एलीट क्लास एंड ही हैड एन एक्सेस टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ अलिफ लैला, तो उसने एक इमेजिनेटिव एक विजुअल अपना इमेजरी बनाई हुई थी कि बसरा ऐसा होगा, हारून रशीद का बगदाद जो है वो ऐसा होगा। जब वो उस बगदाद में पहुंचा तो वहाँ पे ना तो वो नहरें थी, ना वो खूबसूरत औरतें थीं, ना वो फूलों के बाग थे, तो इसको देख के उसका दिल टूट गया। एंड फाइनली वो अपनी ही दास्तानों में जो उसने तिलिस्म पैदा किया हुआ था उसकी शिकस्त की किताब ना ला सका, और माँ की जुदाई का एक सुपर एडेड फैक्टर है जिसकी वजह से ही लॉस्ट। एक छोटा सा पसे नवश्त या पोस्ट स्क्रिप्ट ये है कि ये सारा जो फेलियर था, ये वर्ल्ड वॉर वन में इसको द सेज ऑफ अमारा कहते हैं, एक शहर है अमारा के नाम से, उसको कत्ल अमारा एक वहाँ पे सेज हुई थी, और ये एक इट वाज अ मिलिट्री डिजास्टर एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्लैन लॉस्ट हिज लाइफ। व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर इज दिस मैसेकर वुड हैव नेवर हैपेंड। जनरल टाउनशेंड जो थे वो इस कैंपेन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, ठीक है। मजे की बात यह है कि जनरल साहब ने भी अलिफ लैला पढ़ रखी, और जनरल साहब के दिल में कहीं ये था कि वो बगदाद को फतह कर लें ताकि वो बगदाद के पाशा कहलाए। सिर्फ पाशा कहलाने और दास्तान के ताकुब में निकलने और एक टाइटल अपने नाम करने के चक्कर में उन्होंने एक कैंपेन की जिसके नतीजे में कल्याण का और कई सैकड़ों हिंदुस्तानियों का इंतकाल हुआ। सो दास्तान हमारी ज़िंदगी में यूं भी आती है, और बट मैं मेरा ख्याल ज़्यादा ही बोल
नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बहुत दिलचस्पी के साथ, असल में जितनी आपने तमहीद बाँधी उसके बाद अब मेरे सवाल बहुत छोटे महसूस होने लग गए, तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे सवाल रखने ही नहीं चाहिए थे। तो नॉस्टैल्जिया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ख्याल होता है कि नॉस्टैल्जिया असल में इंसान को माजी की तरफ धकेलने की या इस तरह की कोशिश है कि वो बस वो आगे ना जाए, उसे पीछे ले जाया जाए। आपने भी एक जगह लिखा है कि वहीदुल्ले के वारसों ने घोड़ों पर लड़ने के बजाय और ये अब जमहूरियत का जी, तो नॉस्टैल्जिया के बारे में आप, आपकी क्या राय है और आप इसे किस तरह देखते हैं?
नॉस्टैल्जिया के बारे में एक रशियन पेपर मैंने पढ़ा था, मतलब एक रशियन खातून थी, उन्होंने टू मी इट अपील्स अ लॉट एंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, उन्होंने नॉस्टैल्जिया को कहा है कि नॉस्टैल्जिया इज द मोस्ट इफेक्टिव रेबेलियन ऑफ अ मैन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्ट ऑफ टाइम. ठीक है, क्योंकि वक्त आगे जा रहा है और आप इसका कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी, और ये वक्त आपकी ईजाद है, याद रहे हमने घड़ियां पहर बनाए हैं, हमने ये तय किया है कि 24 घंटों का एक दिन होगा, उसके 3 पहर होंगे, रात के इतने पहर होंगे, महीनों की ये तकसीम होगी, फिर उसमें हमने सूरज को चांद को घसीट लिया एज इट सूट्स, फिर वो कासिम पोपलजई और मुफ्ती मुनीब भी आ जाते हैं इस पूरी बहस में. लेकिन वक्त का जो पूरा कंस्ट्रक्ट है वो इंसान ने अपनी सहूलत के लिए ईजाद किया, और अब यही उसके हाथ नहीं आ रहा, वो वक्त को आगे जाने से रोक नहीं पा रहा, तो इसके लिए उसके पास जो सबसे खूबसूरत हथियार, सबसे मुअस्सर हथियार है, वो ये है कि वो पीछे की तरफ भागे. अब घड़ी आगे की तरफ जा रही है और इंसान पीछे को जाना चाहता है. ये जो पूरी जंग है ये नॉस्टैल्जिया का मैदान जंग है या कुरुक्षेत्र है.
तकसीम हिंदुस्तान के बारे में मैं तो, आपने बियॉन्ड डिग्री ऑफ सेपरेशन के उसमें भी आपने इसका तस्करा किया, और ये एक अजीब सा सानहा हुआ. तकसीम हिंदुस्तान तो ये सानहा था, लेकिन एक और तकसीम वाकई हो गई, हम लोगों की तकसीम, यानी वो नई जनरेशन या वो जदीद लोग या मिलेनियल्स जिसे आप बोल कह सकते हैं, वो जो अब आ रहे हैं वो बट गए हैं. जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर में रहने वाला आदमी वो ताल्लुक नहीं रखता मिट्टी के साथ जो ताल्लुक शायद कुछ 100 साल पहले था. तो ये भी एक तकसीम वाकई हुई है. इस के पसे मंजर में आप क्या चीज़ें देखते हैं, क्या ये कोई मुस्बत चीज़ हुई है?
मैं आई विल लाइक टू टेक रिफ्यूज इन द टर्म फॉल्ट पेसिमिज्म. मैं कनूतियत पसंदी के साथ बहुत खुश रहता हूँ, काम रहता हूँ कि भाई ठीक है, ये दुनिया ने तो डूबना ही है, जैसे आंखों देखी में वो कहते हैं ना कि अनुभव है बस, ठीक है. सो बात यह है कि तकसीम हिंद एक ऐसा, किसी ने पूछा था मीरा नायर से कि आप तकसीम पार्टीशन को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह यहूदियों के लिए ये करीब करीब नामुमकिन है कि वो हॉलोकॉस्ट को भूल जाएं, इसलिए किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांग्लादेश में रहता है तकसीम को भुला देना मुश्किल है. और ये ऐसा नहीं है, मतलब कल्लात में एक शख्स रह रहा है उसका इस तकसीम से वो क्योंकि उसको ये तकसीम वैसी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जहाँ जहाँ ये तकसीम हुई है और इसके जो ज़िमनी असरात हैं, मिसाल के तौर पे ये गुरु मांगट रोड से मैं अभी आ रहा था, सो ये सारा इलाका जो है ये सांसियों का होता था, और सांसी किधर हैं अब ये भी एक अचंभे की बात है कि सांसी एक कबीला हुआ करता था और ये हमेशा गांव की पैरिफ्री में थे, आबाद हुआ करते थे ये, दे वुड ऑलवेज, ये बूट लेगर्स थे, इनके जिम्मे शराब मुहैया करना था. और लेकिन जो चीज़ इन्हें सोशल हरारकी में सबसे नीचे प्लेस करती थी वो ये थी कि ये मुर्दार खाते थे. लेकिन वो वक्त अच्छा था, लोग एक दूसरे को इस बात पर जज नहीं करते थे कि भाई तू क्या खा रहा है. आज जज करते हैं इंस्टा पे, वो लगाते हैं लोग अपनी फूड की स्टोरीज. सो बात ये है कि जब तकसीम होती है, अब इसका एक बिल्कुल छोटा सा बहुत लकीर में बहुत पीछे नुक्ता है कि जब तकसीम हुई तो अब हर बंदे को अपनी अपनी पड़ गई, मैं उठ के किधर जाऊंगा भाई, तुम उठ के किधर जाओगे. तो सांसी जो थे एज अ कम्युनिटी वो बहुत वेल नेट थे, और उनके अपने कुछ मतलब अपने संस्कार थे, अपने उसूल थे, अपने उन्होंने कुछ बनाए हुए थे. जाहिर है एकदम नहीं चीज़ डिवेलप होती, इसको कुछ वक्त लगता है. उनका पूरे का पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो था वो जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स कलैप्स करता है वो वैसे गिर गया. तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि आधे सांसी जो थे वो किसी उधर जाके ब्राह्मण हो गए, आधे जो थे वो इधर आके. अब खैर जात पात पे एक और बहस चल रही है, खुदा आमिर लियाकत साहब को ज़िंदगी दे, रौनक के बर्पा किए रखते. तो वो उन्होंने यहाँ आके, तो अब आपकी तारीख में से अब आप ढूंढेंगे कि सांसी किधर होता है, तो आपके पास जो पहली किताब आएगी वो तारड़ साहब की होगी, उसमें से आप देखेंगे अच्छा सांसी ऐसे होते थे, ठीक है. और वो वक्त आएगा फिर आपके पानी में नमक डाल के कहेंगे अच्छा शोरबा ये होता है, ठीक है, और जो इसको शोरबा नहीं मानेगा उसके खिलाफ मैं सोशल मीडिया पे जिहाद शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये मतलब जाहिर है अगला स्टेप ये होता है ना कि इफ़ यू डू नॉट एग्री टू वर्ड, आप मुंह से कह रहे हैं कि देखें वाइट और ब्लैक के दरमियान ग्रे के बहुत शेड्स होते हैं, लेकिन आप खुद मानने को तैयार नहीं है कि ग्रे के ये शेड्स एग्जिस्ट करते हैं। सो और तकसीम के कुछ ऐसे असरात तो हमें आज नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे असरात हैं जो हमारे बाद लोगों को नज़र आएंगे। ठीक है, जब कुछ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ रहती है, और एक बहुत छोटा सा बड़ा मीनिंगलेस सा रवैया, लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ
जी,
ठीक है, लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ है, तो एक तरफ पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तहनीती पैगाम भिजवा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं दूसरे के साथ, जाहिर है इतने साल। एक और तबका है लोगों का, वो उठता है और लता की जाके सावरकर के साथ जो तस्वीरें हैं वो निकाल के ले आता है, वो लता की मुजीबुर रहमान के साथ तस्वीरें निकाल के ले आता है, वो ढूंढ ढूंढ के आपको, ये जिस तरह कोहिस्तान की तरफ जाएं तो वो बच्चे आपकी गाड़ी रोक के आपके आगे चंदे का डब्बा कर देते हैं कि भाई तुम चंदा दे के मस्जिद का फिर आगे जाना। इस तरह ये लोग सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए आपकी वॉल में घुस के आपके इनबॉक्स में आके आपको रोक के बता रहे हो भाई तू लता की तारीफ कर रहा है, तुझे पता नहीं ये वीर सावरकर के साथ थी। ये लोग तकसीम का वो एक ज़िमनी नतीजा है कि जिससे अभी तो नहीं पता लग रहा, लेकिन बाद में पता लगेगा कि आंटी गवर्नमेंट ठीक कहते हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट। सो वो आपको मतलब ये लोगों में इतनी नफरत फैलती जाएगी और ये रुकेगा नहीं ये सिलसिला, ये हम जो मर्जी इसके आगे एक लतीफ़ बंद बांध लें, इस तरह की जगहों में बैठ के गुफ्तगू करते रहें, पुराने वक्तों को याद करें, हम ढूंढ ढांड के लाते रहें कि अच्छा ये जो जगह है ये मॉडल टाउन है, ये गंगाराम ने इसको डेवलप किया था, आप जो मर्जी कहते रहें। वो लोग जिन्होंने लता को वीर सावरकर के साथ खड़ा कर दिया है, ठीक है, मुझ तक ये जब पैगाम पहुँचा तो ये मतलब ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, मुझ तक ये पैगाम पहुंचाने वाली एक कोई 24-25 साल की एक खातून थी जो कि बजिद थी कि भाई ये तो लता जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके नाम के आगे RIP भी लिखा जाए। अब उन्हें कौन समझाया कि भाई लता अकीदे को और नज़रिए को और वतन की सरहद पे जहां मर्जी खड़ी थी, हम जैसे लोगों का एक पूरा मतलब हमारी दुनिया उसके सुरों के साथ जुड़ी हुई है और बहुत गहरी इतनी वो जिस तरह वो है कैप्टन कॉर्लिस मैंडलिन में कहता है कि वो इतनी डिटेल इतनी इंटरवोवन है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल फॉर अस टू पार्ट, वो मुमकिन नहीं है कि हम उसको अलग करें। हम एक एक दिन में लता जो हैं वो 8-8 जगहों पे हमारे साथ हैं, तो आप कैसे, मैं मतलब अब ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए,
हम काट देंगे,
ठीक है। मेरी अपनी शादी का मामला है और मैं जा रहा था शादी का इंटरव्यू देने के लिए, और इस दौरान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने जो हैं वो पस मंजर में चल रहे हैं, ठीक है, आज ही आजा गाता हंसता तेरा रास्ता देख के रास्ता, भूलने वाले तुझको मेरी याद सताए, अरे ये मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा वहाँ जाके शादी से इनकार हो गया, उनका ये तो भाई ठीक नहीं है बंदा। मैं वापस निकलता हूँ और सिर्फ कैसेट चेंज करता हूँ, दो दिल टूटे दो दिल हारे दुनिया वालों सदके तुम्हारे, ठीक है। और लता के जो अल्फाज हैं वो ऐसे उतरते हैं जैसे बिल्कुल कोई आदमी, आपने कभी देखा होगा ये छोटे शहरों से लोग बड़े शहर में आके नजूमी के पास बैठे होते हैं ऑन द हॉन्चेस, और वो एक एनवलप खोलता है और एनवलप में से एक बड़ी जेनेरिक बात निकलती है, वो कहते हैं हाँ यही हमारी बात, ठीक है, वो कहता है प्यार तुम्हारा देखा, देखा तुम्हारा आंखें मोड़ना, ठीक है। तो आपके ऊपर लता के ये सारे अल्फाज जो हैं ये वारद हो रहे हैं, ठीक है, आप घर पहुँचते हैं, ठीक है, और आपके घर में आगे एक कज़न की शादी हो रही थी और बत्तियाँ लगी, ठीक है, और आदमी कहता है कि दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है, अपना अपना हिस्सा है, कोई लूट जाता है कोई लूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और आप खैर जाते हैं, आप खुदकुशी का इरादा करते हैं और आपके अब्बा तक खबर पहुंचती है, वो कहते हैं क्या बकवास है, क्यों है, ऐसा है, ये है, वो है, तुम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है और तुम ये करोगे, तुम अब ऐसे करोगे। ये सब करने के बाद एंड पे आपके अब्बा जो हैं वो अभी अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं कि बीच में दादी आती और वो कहती हैं कि भाई नथिंग डूइंग, ये जो बच्चा है ये जहाँ कहेगा इसकी शादी वहीं होगी। और अब्बा जो है उन्होंने चूंकि दादी के आगे कुछ नहीं कह सकते, वो कहते हैं ठीक है ये शादी ख़त्म होती तो हम जाके वहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात मैं खुद करता हूँ, ठीक है। और फिर जब हम जाते हैं तो दोबारा मतलब राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं आजा सनम मत। अब ये बताइए कि आप इस पूरी एक एक आदमी की ये एक दिन का ये रोजनामचा है, इस रोजनामचे में आप लता मंगेशकर को निकाल के उसे किसी ऐसे एक इमेजिन्ड नैरेटिव है, बेनेडिक्ट एंडरसन लिखता है कि इमेजिन्ड कम्युनिटीज हैं ये, आप पाकिस्तानियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन पाकिस्तानियों के साथ जिन्हें आपने नहीं देखा, आपके जहन में एक तसव्वुर है कि पाकिस्तानी ऐसे होंगे, और ये अलग बात है कि उनके जहनों में जो तसव्वुर है उसके मुताबिक आप सब कुछ हो सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ठीक है। सो हम इस पूरे ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है, नेशनैलिटीज या कोई भी एक बड़ा गिरोह। सो तकसीम के कुछ तो वो चीज़ें हैं जो उस वक्त हो गई, तरलोक शाह की हवेली को लोगों ने आग लगा दी, परी महल लुट गया, यहाँ से जाने वाली ट्रेनों को लूटना शुरू कर दिया, काला कादर का गांव बेआबाद हो गया, चकमरू के स्टेशन के आगे उन्होंने लकीर लगा दी, नीचे रामगढ़ बंद हो गया, इस्लामगढ़ इधर हो गया, बहुत तमाशा हुआ, एनियापा की नहटोर की पूरी सल्तनत लुट गई, वो यहाँ आ गई, और कुदरतुल्ला शहाब साहब जो थे वो उन्होंने मतलब एक नया मतलब ये पूरा एक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं जिनका बहुत बाद में पता लगेगा, और बाद में बैठ के लोग सर खुजाएंगे कि ये हुआ क्या था हमारे साथ। तो ये है एन मुमकिन है कि इसमें गलती या कसूर उन लोगों का निकले जो ये कहते हों कि भाई ये बड़ी ज्यादती हुई, ठीक है, क्योंकि बाइनरिज्म है, जब आप ये कहते हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है तो लोग ये कहते हैं अच्छा अब वो वहाँ जो हो रहा है वो ठीक है, जैसे वो एक कॉमेडियन का है इंडिया में कि उसने इंडिया में जब नोटबंदी हुई तो एक कॉमन रिटोरिक था, वो रिटोरिक ये था कि कोई भी अगर मोदी के खिलाफ बात करता था तो वो उसको वो कहते थे कि नहीं नहीं पाकिस्तानी, वो कहते थे वहाँ हमारे जवान से सीमा पे खड़े हैं और तुमसे यहाँ कतार में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ठीक है। तो एक बैंक में इसी तरह आदमी जो था वो क्यू में लगा हुआ था नोट चेंज करवाने के लिए, तो उसने कहा यार क्या बकवास है सुबह से यहाँ लाइन, तो आगे जो अंकल थे वो प्रॉब्ली इसी तरह के थे जिस तरह के हमारे अंकल होते हैं व्हाट्सएप देख के ज्ञान प्राप्त करने वाले, वो पीछे मुड़े और कहने लगे वहाँ हमारे जवान सीमा पे खड़े हैं और तुमसे यहाँ कतार में नहीं खड़ा हुआ। उसने पलट के जवाब दिया मैं ही वो जवान हूँ जो सीमा में पहले खड़ा हुआ और अब यहाँ आया। सो यस दैट सम्स इट अप।
तो एक इससे बड़ा सान है ये है कि हमने,
मुझे लगता है आपने सीरियस सवाल लिखे हुए, मैं कॉमेडी कर,
नहीं नहीं अदीब हमने बांट लिए, कहानियां बांट ली, ये मुश्किल होता है कि एक 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 पूरी कम्युनिटी जो इकट्ठी रह रही है उनके त्यौहार एक है, उनकी कहानियां एक हैं, लोक दास्तान इस्तार ये सब एक है, लेकिन ये अचानक क्यों हमने ये बांट लिए और क्या फैक्टर है, और आपको लगता है कि ये महसूस होता है कि शायद जो दूसरा पंजाब है उसने फिर कुछ ना कुछ बाकी रखा, हमने बिल्कुल अबैंडन कर दिया, लोहड़ी हो, रंजीत सिंह हो, भगत सिंह हो, कोई भी हो, हमने पूरा बैंड कर दिया सारे।
अच्छा मेरी चूंकि रेल की सिटी का तर्जुमा हो रहा है काफ़ी सालों से हो रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज हमारे दोस्त हैं मित्र हैं हमारे वो पंजाबी में इसका तर्जुमा कर रहे हैं, तो अब तर्जुमा होते होते जो है जिस तरह सरकारी काम हो रहे होते हैं ना कि मतलब PSL हो रहा है तो बाकी काम रुक जाएंगे, ठीक है बाकी सब कुछ रोक दो, PSL हो रहा है, PSL ख़त्म होगा फिर बाकी काम दोबारा शुरू करें। सो इसी तरह हमारा तर्जुमा जब हो रहा होता है तो बीच में अगर चरणजीत साहब का घर बनना शुरू हो जाए या उनकी भैंस को कोई बीमारी हो जाए या उनके कस्बे में कोई मकामी इलेक्शन हो, कुछ भी चुनाव आ जाए, कोई दंगा हो जाए, तो वो वहाँ रुक जाता है। लेकिन इसमें मुझे बहुत जानने का मौका मिल रहा है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ लोहड़ी मनाई जाती है, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा हो सकता है कहीं पर ये कॉरपोरेट कल्चर में मनाई जा रही हो, वरना लोहड़ी यहाँ नहीं मनाई जाती। मेरे अब्बा ने लोहड़ी मनाई हुई है और वो 47 मतलब वो इस मुल्क से कोई एक माह बड़े थे और खुदा का शुक्र है कि वो चले गए वक्त पे, तो अब पिछले साल उनका इंतकाल हुआ है। और आप ये देखिए कि उन्होंने लोहड़ी बाकायदा अपनी होश में मनाई हुई है, जुज़ियात के साथ उनको इसकी उन्होंने मुझे बताया कि डब्बा परया लीरां दा एहोकार अमीरा दा, जिस घर के आगे खड़े होकर पैसे इकट्ठे किए जाते। ठीक है, अब मैं अपने एक नॉस्टैल्जिया में चरणजीत से बात कर रहा हूँ कि मतलब ये बड़ी एक लोड़ी, उसने कहा भाईजान इधर भी यही सीन है, इधर अब उसको हाईजैक, तो वो उसने पंजाबी में बताया इतने बड़े डीजे शीजे वाला सीन हो गया, इतने तो वो कम रहा ही नहीं हूं। आपको पता लगता है कि वहाँ भी लोड़ी का एसेंस जो है वो एक गरीब आदमी से उसकी तफरी छिन गई है, उसमें कॉरपोरेट कल्चर आ गया है, लोगों ने लोड़ी पार्टीज पे इनवाइट करना शुरू कर दिया है, बड़े फैंसी से उसके मंडप बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और जब मतलब जब मैं ये सारी बात सुन रहा था और किसान मोर्चा भी चल रहा था, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी थी, उसका एक मिसरा मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। वो ये था कि तेनू बार लो सानू काला बाघ खा गया। अब ये बज़ाहिर बहुत एक आसान सा जुमला है कि तेनू बार लो सानू काला बाघ खा गया, हमारा जितना नुकसान हुआ इस पंजाब का वो नवाब काला बाघ ने अपनी गवर्नरी में किया, बिकॉज ही रूल्ड पंजाब विद एन आयरन फेस्ट एंड डिड नॉट लेट एनी, जो उनकी एक आइडियोलॉजी थी एलिटिस्ट एचिसन के पड़े हुए और एक अपने शोशा में यकीन रखने वाले, किसी भी मुजाहमत को कुचल देने वाले, उधर ये चल रहा था कि उधर डॉक्टर बार्लो थे जिन्होंने ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। उस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये हुआ कि हिंदुस्तान पूरा जो पंजाब है उसमें वीट की एक्सेसिव काश्त शुरू हो गई। जब वीट की काश्त शुरू हुई तो डाइवर्सिटी अर्थ की ख़त्म हो गई। डॉक्टर बार्लो जो थे उन्होंने वो बीज इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से हाइब्रिड सीड जो है वीट का वो आया। जब वो सीड आया तो उसने ऑर्गेनिक सीड को रिप्लेस कर दिया। जब सीड रिप्लेस हो गया तो ये जो सीड था ये चूंकि हाइब्रिड था, हाइब्रिड जो होती हैं चीज़ें उनमें कुदरती लड़ने की सलाहियत ना होती, ठीक है, तो वो इधर उधर से कहती हैं, तो बीमारियां इस बीज पे ज़्यादा तेज़ी से हमलावर हुई। अब पेस्टिसाइड इसको डालना शुरू हुए, पेस्टिसाइड जो था वो ज़मीन में जब जाना शुरू हुआ तो उसने सब सरफेस वाटर टेबल का बेड़ा गर्क करना शुरू हुआ। तो नतीजा ये है कि आज का जो हिंदुस्तानी पंजाब है इट इज़ मतलब ये जो शहर हैं बठिंडा वगैरह ये कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, बिकॉज सब सरफेस वाटर इतना टेम्पर हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता जो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप है वो इनटॉलरेबल बहुत एक्सपेंसिव हो गई, तो किसानों को अपनी ज़मीनें बेच के कनाडा जाना पड़ा। ठीक है, जिसका आपको और मुझे दिलजीत दुसांझ वगैरह की सूरत में एक अच्छी अवेलेबल है चीज़, बट नुकसान तो हुआ, तो हमें काला बाग और उनको बोर लाओ जो है वो दोनों तरफ ये नुकसान हुआ है, एक तरफ और तरह का हुआ, एक तरफ और तरह का हुआ।
ज़बरदस्त। अब एक आखिरी सवाल बस मैं ये करना चाहूँगा कि एक उर्दू इस्तेमार की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, आपके ख्याल में इसका कोई कुछ काम है हमें एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने में, क्योंकि जब भी पंजाबियत की बात होती है लोग उर्दू में बात करते हैं या अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो महसूस होता है कि जैसे जो उर्दू या फारसी का तबका था, मुग़ल थे इन लोगों, उन्होंने एक अरसा हमारे ऊपर वो किया, इन लोगों ने कुछ ऐसा इन्फ्लिक्ट कर दिया उर्दू की शक्ल में या फारसी की शक्ल में जिसने हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में का शिकार कर दिया और अब हम अपनी शनाख्त से भी घबराते हैं।
मैंने आइडेंटिटी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, हमारी लंदन स्कूल की प्रोफेसर थी प्रोफेसर वेंडी, पहले दिन उन्होंने एक फिक्रा हमारे हवाले किया था और वो अभी तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी क्वेश्चन ही उस वक्त होती है जब वो क्राइसिस में होती है। ठीक है, एक बात, और दूसरा ये कि ये जो तारीख के जो इस तरह के मामलात हैं उनके ऊपर हाल में बैठकर किसी भी किस्म का फैसला साधा, इस बारे में ज़्यादा बेहतर जवाब देने के लिए ज़फ़र इमरान और अदनान काकड़ हैं, वो अपनी तरह के मतलब वो लिसानियात के माहिर हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको याद करवाना चाहूँगा कि पंजाब की जो 7-8 हज़ार साल पुरानी तारीख है, जो ऑर्गेनाइज्ड एक तारीख है, उसमें एक ऑर्गेनिक रूलर है महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह की कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी, क्या वो पंजाबी थी,
फ्रेंच,
फारसी। ठीक है, तो अगर महाराजा रंजीत सिंह तमाम तरह अथॉरिटी के बावजूद पंजाबी को कोर्ट लैंग्वेज नहीं बना सके, ठीक है, तो इसका मतलब है कि द फेलियर और द ओनस ऑफ फेलियर इज नॉट अपॉन अस, इट हैज़ टू बी, और अगर इसमें जान होगी जुबान में तो ये सरवाइव कर जाएगी, कर गई है, बोलते हैं अभी भी लोग और अब ज़्यादा शिद्दत से बोली जाने लगी है। ठीक है, अब इसको काफ़ी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी वजह से ये अपने आप को इन्फोर्स कर सकती है। सोशल मीडिया पे लोग पंजाबी माँ बोली दिहाड़ मनाते हैं, ये जाने बूझे वगैरह के वो 21 फरवरी को है, और 21 फरवरी जो है वो पहली दफ़ा ज़ुबान के नाम पे एक मज़ाहमत बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। सो और अब आप कभी बंगालियों से जाके कहानी सुने तो उसमें मतलब विलन पंजाबी हैं, ठीक है, और यहाँ पे पंजाब में 21 फरवरी को माँ बोली का दिहाड़, पता नहीं हम किसके खिलाफ तलवार उठा के, पता नहीं हम किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने सवाल कामयाबी से स्किप कर दिया।
मेरा ख्याल है कि हम आपको जहमत देते हैं कुछ कहानियाँ सुनने के लिए। इससे पहले कि मैं एक छोटा सा तारुफ जो है वो रेल की सीढ़ी का करवाना चाहूँगा, ये लिखी हुई शक्ल में ही है, वो लोग जो नहीं पढ़ते या जिन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ते समाज सब लोग पढ़ने वाले होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए चंद सत्रें हैं जो मैं, और ये मेरी मोहब्बत का खराज समझी जो मैं आपके यहाँ पेश करना चाहता हूँ। तो ये कुछ यूँ है कि रेल की सीटी के तारुफ में अर्ज करता चलूँ कि एक ऐसी किताब है जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह आपको स्टेशन बस स्टेशन घुमाती और रंग बिरंगी कहानियाँ सुनाती है, वो कहानियाँ जो शायद आप किसी न किसी हवाले से सुनते आए हैं, लेकिन एक दास्तान गो के बयान और कहानी कहार के क्राफ्ट के बगैर सुनते आए हैं। रोमियो और जूलियट से पहले भी नौजवान मोहब्बतें करते थे और इन मोहब्बतों को कुचला जाता था, लेकिन शेक्सपियर के कलम ने कहानी या ट्रेजेडी के कैनवस पर वो रंग बिखेरे कि आइंदा मोहब्बत करने वालों के लिए रोमियो और जूलियट मोहब्बत विसाल और हिजर का इस्तारा बनकर रह गया। पंजाब की धरती पर हीरों और रांझों की कमी नहीं है, लेकिन वो वारिस शाह सदियों में पैदा होते हैं जिसकी तलाश गुजरांवाला की अमृता प्रीतम को थी। आज कितों ले आइए लब के वारिस शाह एक होर। यही मामला हसन मिराज साहब की इन कहानियों का है। मिर्जा की बक्की पर साहिबा का बैठना और सारे रास्ते दोनों दिलों की धड़कनों के उतार चढ़ाव से सारा दानाबाद वाकिफ है। इसमें अगर कुछ बाकी है तो वो कहानीकार का दिल। यही रेल की सीटी का इम्तियाज है। मुझे कहने की इजाज़त हो तो मैं कहूँगा कि यही वो सनतगरी और फ़न है जिसके बारे में अख्तर उस्मान ने कहा था कि ये जो लफ्ज़ों की पैगंबरी है, ना होती तो इबरत सरा में भला कौन जीता। मैं लफ्ज़ों में सिस्कारता हूँ। आइए इसी सिस्कार को हसन मिराज की कहानियों में महसूस करते हैं। मैंने जब पहली बार किताब को देखा तो मैंने सबसे पहले तेज तेज सफ़े पलट के देखा है कि आप टोबा टेक सिंह के स्टेशन पर रुके हैं कि नहीं।
जी जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह रुके
हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा शहर है। तो
गोजरा की बस्तियों से आगे किसी दरवेश की याद में एक शहर आबाद है। सुना है पहले पहल इस गुजरगाह पे कुछ भी ना था। जब ये बुजुर्ग यहाँ पहुंचे तो इन्होंने अपनी चादर बिछाई और डेरा लगा लिया। टोबा पानी से भरा था और टेक सिंह सरशारी से, सो दोनों की शुक्रगुजारी खलके खुदा के काम आई। टेक सिंह हर आने जाने वाले को पानी पिलाते और दुआएं लेते। आहिस्ता आहिस्ता खिदमत और दुआओं की बुनियाद पर यह टोबा टेक सिंह के नाम पे आबाद हो गया। टोबा टेक सिंह से जुड़ी एक कहानी अमीर चंद कोहली की है जो अपने मुरब्बे पे जमींदारा करते थे। शहर में अक्सरियत मुसलमानों की थी जबकि सिख और हिंदू खाल खाल ही नजर आते। अमीर चंद भी ऐसे ही एक हिंदू थे। ऊपर तले पैदा होने वाली बेटियों और बेटे की आरजू उन्हें एक दरगाह पे ले गई। मज़ार के फ़कीर ने उन्हें यह मन्नत मांगने का मशवरा दिया कि अगर उनके यहाँ बेटा हुआ तो वो उसकी परवरिश सिख मज़हब पे करेंगे। अगले साल जब अमीर चंद के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने वादे के आयन मुताबिक उसका नाम बिशन सिंह रखा। यूँ तो सारा साल इस आंगन में रौनक रहती, मगर जब गर्मियाँ आती तो अमीर चंद की बेटियाँ शुमाली हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आबाद होती टोबा टेक सिंह पहुँच जाती और जेठ हाड़ तक वहीं रहती। बहनें दुख सुख करती और बच्चे खलियान घूमते। अब अमीर चंद की औलाद ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से गरबुल हिंद के जजीरों तक और वाशिंगटन के बर्फाब से दुबई के सहरा तक हर जगह आबाद है, मगर उन्हें ना टोबा भूलता है और ना ही उस सिख का एहसान। वो बच्चे जो तकसीम के वक्त बहुत छोटे थे अब पूरी दुनिया घूम चुके, मगर उन्हें गांव के तालाब से खरबूजों की शेरीनी तक सब कुछ याद है। 1947 की गर्मियों में भी हर साल की तरह अमीर चंद के यहाँ उनका ख़ानदान इकट्ठा था। एक शाम वो मुरब्बों से लौटे तो चौक में गैर मामूली रश था। दायरे में खड़े कुछ मुसलमान अपने काफिले पे गुजरने वाली क़यामत का हाल सुना रहे थे। इस मुहाजर काफिले की कुछ बेटियां कुओं की नज़र हो गईं और जो बच गईं वो इंसान की हैवानियत के सबब जिंदा लाशें बन चुकी थीं। अमीर चंद को लगा कि सफ़र, जुल्म और बेबसी से इनके चेहरे कुछ बदल से गए हैं। घर पहुंचने पे उन्होंने बैठक में माझी राम से हुक्का मंगवाया और नय मुंह में रखकर बहुत देर तक सोचते रहे। मगरिब से थोड़ा पहले अचानक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं और फिर शोर शुरू हो गया। भागो, मारो और बचाओ के इस आलम में किसी को सामान की फिक्र नहीं थी, हर कोई बस भाग रहा था। जूं जूं बलवाइयों की आवाज़ें करीब आती जाती, ये लोग एक गली से दूसरी गली में छुपते जाते, यहाँ तक के बलवाई ज़्यादा हो गए और गलियाँ कम। शहर की आखिरी गली आई तो पुलिस भी हरकत में आ गई और इन्हें उन लोगों से बचाने के लिए अनाज मंडी में ले गई जिनके साथ वो सालों से रह रहे थे। अनाज मंडी में पड़ाव बढ़ा तो कई लोग भूख से और कई बीमारी से मरने लगे। बंदे और खुदा के दरमियान तरपाल की एक फटी वो सीधा सी तह हायल थी जो दुआ के अलावा और कुछ न रोकती थी। खेमे के अंदर उम्मस के सबब रहना मुश्किल था और खुले आसमान के नीचे बेटियों के साथ रहना नामुमकिन। हर आने वाले दिन के साथ राशन कम पड़ता जाता था और वबाएं ज़्यादा। अमीर चंद सोचते कि मदरसे में मौलवी साहब जब तारीख पढ़ाते तो बताया करते थे कि हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह आए उनकी जंगें बादशाहों से हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो लोग एक दूसरे के खून से क्यों अपनी प्यास बुझा रहे थे। सबको माझी राम की फिक्र भी लाहक थी, मगर ये कोई ना जानता था कि अब माझी राम माझी खान बन चुका है और अपने नए हम मजहबों के साथ अमीर चंद की हवेली को लूट रहा है। जिस दिन स्पेशल ट्रेन आई उन्हें कैंप में रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। खौफ से कपकपाते होंठ और नामालूम दुआओं से लरसते वजूद भेड़ बकरियों की तरह डब्बों में ठूंस दिए गए। ये वो मौसम था जब पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन एक सा मंजर पेश कर रहे थे। नौमौलूद लकीर के दोनों तरफ से आने वाले लाखों अफराद अपने वजूद पे हजारों दास्तानें लिए फिरते थे। पपड़ी जमे होंठ, आंखों के कोनों पे गर्द के दस्तखत, चेहरे पे मैल, शिकनों में मट्टी पड़ी लकीरें और जुबान पे नमक का जायका, ये सब कहानियां ही तो थीं। स्टेशन पे लगी टूंटियों के गले खुश्क हो चुके थे और रास्ते भर में कहीं पानी ना था। रेल टोबा से निकली तो लाहौर स्टेशन पहुंचकर अपनी सजा सुनने के लिए खड़ी हो गई। इस ट्रेन की सलामती का दारोमदार हिंदुस्तान से आने वाली ट्रेन पे था। अगर उधर से मुसाफिर जिंदा आ जाते तो यहाँ से इन लोगों की सलामत वापसी का इम्कान था, वगरना लाशों भरी ट्रेन लाशों के साथ ही वापस जाती। दूर से आती रेल की कूख कान पड़ी तो पायदान से झांकते चेहरे नजर आए। आने वालों की जिंदगी के सदक़े जाने वालों की जान बख्शी हुई। ट्रेन अमृतसर के रास्ते पटियाला पहुंची तो दिवाली का दिन था। बाहर निकलते हुए मुसाफिरों को फूलों के हार पहनाए गए। अमीर चंद को लगा कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे भी सब लोग ऐसे ही थे। रेल के बड़े बड़े शीशों में अमीर चंद ने देखा तो कोने में NWR के हरूफ के नीचे उसे अपना चेहरा भी चौक में खड़े उस मुहाजिर जैसा नजर आया। अमीर चंद वाले टोबा टेक सिंह तो 50 साल होने को आए, मगर मंटो का टोबा टेक सिंह कल का किस्सा लगता है। कहने को तो ये बिशन सिंह नामी एक पागल की दास्तान है, मगर इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सारी तकसीम का कर्ब उतर आया है। कहानी का मरकजी किरदार जो किसी पागल खाने का मकीन था, असासों की तकसीम के दौरान जज्बात की तकसीम पे आकर रुक गया था। उसका दिल उसके जिस्म और उसकी रूह उसकी वाबस्तगी के दरमियान बट रही थी, शायद इसी का नाम बंटवारा था। बिशन सिंह का जोर ना तो मास्टर तारा सिंह पे चला और ना ही जिन्ना साहब पे। वो ना तो जवाहरलाल नेहरू को जानता था और ना ही अंग्रेज सरकार की सियासत समझ आती थी, सो उसका गुस्सा बस अपने आप पे ही निकला। कहते हैं मंटो ने जिस शाम पार्क टी हाउस में पहली बार ये अफसाना पढ़ा, उस दिन वो किसी तौर उस उम्र या उस अहद का नहीं लग रहा था जिससे उसका ताल्लुक था। अफसाने की आखिरी लकीरें पढ़ने से पहले मंटो ने एक नज़र हॉल पर डाली। महफिल पर खामोशी का मुकम्मल राज था। जिस वक्त मंटो आखिरी जुमलों पर पहुंचा, लोग खुली आंखों से रो रहे थे। यहाँ इक्तबास है। सूरज निकलने से पहले साकित व सामित बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े हुए आए और देखा कि जो आदमी 15 साल तक अपनी टांगों पे खड़ा रहा था ऊंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था टोबा टेक सिंह पड़ा था।
आप लोग अगर कोई फरमाइश करना चाहें सुनने के लिए तो
आप सवाल भी कर सकते हैं फरमाइश के साथ साथ। बाय वन गेट वन फ्री।
जी मेरा नाम माजिद है जी। मैं दो मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें हैं उनको कंबाइन करके एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये कि जो आपने मंडी ढाबा सिंह का बताया, तो वो 61 साल में मजहबी इंतहा पसंदों से तो बच गई, लेकिन वहाँ पे एक एमपी कत्ल हो गए, तो फिर उनके नाम पे हुकूमत को नाम चेंज करके सफदराबाद रखना पड़ा, एक ये बात। दूसरी बात ये कि अमृतसर में मुझे एक साहब मिले तो वो बता रहे थे कि उनकी कज़न जो थे, उनके एक कज़न थे, उन्होंने ये बताया कि हमारी दादी मुसलमान थी। अब ये इस पूरे एक फ़िक्रे में पूरी दास्तान है जिस तरह आपने कहा। अब ये दोनों वाक़यात जो हैं, ये क्या इनको हम तारीख का जबर कह सकते हैं जो हमें घसीट के एक जगह पे लेके आते हैं, या इसमें कोई इख्तियार होता है लोगों का?
क्योंकि करने वाले एग्जीक्यूशनर जो होते हैं वो तो लोग ही हुआ करते हैं। साइलेंट वाटर एक फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सी तकसीम के बाद ऐसी ख्वातीन थी, क्योंकि तकसीम के बाद ये बिल्कुल औरत और मर्द का आपसी ताल्लुक ऐसा है कि अब आके कुछ नई इसकी सीमाओं का तायुन होना शुरू हुआ है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वरना कोई भी लड़ाई जो हो उसमें आखिरी बार्गेन जो है वो औरत के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो कोई जिरगा हो, वो कोई मज़हब हो, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट की तारीख भरी पड़ी है, उसमें औरतों का इस्तेमाल होता है। जब तकसीम हो गई उसके बाद ये वाला काम शुरू हो गया कि जो औरतें जहाँ थी, या तो वो अगर मैं एक रिपोर्ट है, लिजॉन ऑफिसर की रिपोर्ट है, पार्टीशन के बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी, वो इधर पंजाब आर्काइव्स में पड़ी होगी, आपको अगर वो पढ़ने का इत्तेफाक हो, मैंने उसके कुछ हिस्से जो हैं वो इस किताब में लिखे हैं। सो आई लाइक टू टेक यू ग्रेजुअली थ्रू द होल थिंग। 47 का जब हमारी तरफ इसको तकसीम कहते हैं, अमृतसर या पंजाब वाली साइड पे इसको वांडदा उजाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो जब उधर ये 47 का पूरा मामला हुआ, तो कुछ महीने तो ऐसे थे कि जिसमें अभी लोग जा रहे थे फिर लोग आ रहे थे, तो जो जहाँ पे औरतें फंस गई थी उन्होंने ये तय किया कि हम यहीं पे रहेंगी, जैसे बूटा सिंह की कहानी में जैनब है, ठीक है। उसके बाद जब हालात थोड़ी सी बर्फ पिघलती है और लोगों को याद आ जाता है कि ओहो, कायद आजम का तो ये ख्याल था कि ये इंग्लैंड और फ्रांस जैसा ताल्लुक होगा, उन्होंने अपना घर भी नहीं छोड़ा औरंगजेब रोड वाला, तो इन्होंने कहा कि जब अब औरतें वापस करते हैं। लेकिन इस दौरान दो काम शुरू हो गए थे, एक तो हिंदुस्तानी पंजाब में कहत पड़ गया था, ठीक है, और उस कहत की वजह से मतलब मेन रीज़न कहत का था, और उसको ऑनर का नाम देके उन्होंने जो ख्वातीन आ रही थी उनको लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। क्योंकि मतलब ये एक बिल्कुल और डिबेट है कि औरत की चैस्टिटी जो है उसका तायुन कैसे हम कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे ये कोई सफ़ेद चादर है जो दागदार हो गई है, जैसे ये कोई, एंड इट इज़ अगेन रिडक्शनिज्म ऑफ अनदर काइंड, यू जस्ट रिड्यूसिंग हर टू कमोडिटी। तो वो होना शुरू हो गया। दूसरा, यहाँ जो औरतें रह गई थी उन्होंने फिर जो सबसे आसान हल था, क्योंकि आपको ये देखना है कि आज हम बैठ के मजहब के बारे में जैसी बातचीत करते हैं ऐसी बातचीत 47 में नहीं होती थी, ठीक है। मज़हब एक हकीकत थी, बट ज़िंदगी के बहुत से रास्ते मज़हब के चौक से इधर उधर होकर निकल जाया करते थे। सिर्फ एक मज़हब की हाईवे नहीं थी, बहुत सी छोटी मुजाफाती सड़कें थीं जो आपको लाहौर से लालपुर ले जाती थी, यूड नॉट हैव टू ट्रैवल ऑन द मोटरवे, सही है। तो उन लोगों के नज़दीक मज़हब इम्पॉर्टेंट नहीं था, उन लोगों के नज़दीक ज़मीन से जुड़त ज़्यादा ज़रूरी थी। सो उन्होंने मतलब माजी सिंह जो था वो माजी खान बन गया, ठीक है। सो ये तारीख का जबर है, बिकॉज इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग इंसान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ा रहा था, उसे सर्वाइव करना था, किसी ना किसी विल तो ये होती है ना आदमी की कि उसने किसी ना किसी तरह अपना बका के रास्ते पर चलना है। तो अब वो उसके लिए माजी खान बने, वो उसके लिए अमीर चंद कोहली को मारे, वो अमीर चंद कोहली की बेटियों को घर डाल ले, अमीर चंद कोहली अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बेटियों को कुएं में धकेल दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्योंकि इर्द गिर्द एक माहौल बन जाता है, उस माहौल से निकलने का वाहिद महफूज रास्ता उस वक्त उस आदमी को जो नज़र आता है वो। सो येस ऑन अ ग्रैंड लेवल ये तारीख का जबर है, बट येस ऑन अ माइक्रो लेवल इसका नुकसान, इसका जिम्मेदार एक इंसान है जो वहाँ मौजूद था उस लम्हे में।
अमृता ने गालबन पिंजर में
तफसील ऐसी
कहानी है। कोई और सवाल?
यहाँ सवाल करने वाले बंदे के साथ लेके
आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेब मुगीरा सिद्दीकी है
जी,
और मैं
जलालपुर पीर वाला
एक दो कुछ चीज़ें रिसेंटली बहुत अजीब और अनएक्सपेक्टेड हुई। आपको भी शायद इल्म होगा, पिछले दिनों जब मेरे सामने वाली सरहद पे सुनते हैं कि दुश्मन रहता है के जवाब यहाँ से तैयार हो रहे थे और सारी एपिसोड जब चल रही थी, उसके बरक्स जब किसान मोर्चा चला तो हैरत अंगेज तौर पर कमालिया और फैसलाबाद के नौजवानों के कुछ गीत मकबूल हुए जिन्होंने उस किसान मोर्चे की हक में बात करना शुरू की, और पिछले 70 सालों से जो सेट नैरेटिव था नफरत का वो पिघलता हुआ हमें थोड़ा सा महसूस होना शुरू हुआ पहली बार। क्या आपको इसमें से कोई उम्मीद नज़र आती है? क्या ये वो बहरान की वो कैफियत थी जहाँ से नए इनकलाब पैदा होते हैं? क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये जो मज़हब की चादर उड़ाई गई थी इसके अंदर से जो हकीकी कौमियत है वो सर उठा पाएगी?
आप सवाल का जवाब पहले लेंगे या सवाल से जुड़ी कहानी सुनना चाहेंगे?
कहानी पहले सुन लेंगे।
सवाल से जुड़ी कहानी है कि हिंदुस्तान में वरुण ग्रोवर हैं और उनका एक बैंड है राहुल राम के साथ, उन्होंने ये गाना बनाया था मेरे सामने वाली सरहद सुनते हैं कि दुश्मन रहता है। हमारे एक दोस्त खावर अजहर है, CRS में होते हैं कम्युनिकेशन रिसर्च स्ट्रैटेजी में, उन्होंने मुझे, हम बैठे हुए थे, उन्होंने एक गाना लगाया, कहते हैं यार तेरे जेन में क्या आता है? मैंने कहा भाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा गाना है, राहुल राम ने बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा नहीं नहीं यार इसको जवाब देना चाहिए। मैंने कहा खावर भाई इनको क्या जवाब दें, दे देगा कोई जवाब? उनका नहीं तुम इसका जवाब लिखो। मैंने कहा मैं इसका जवाब कैसे लिख सकता हूँ, मेरा तो मतलब इतना, मैं इतना अच्छा नहीं लिखता। उनका नहीं नहीं तुम लिखो। तो मैं उन दिनों झंडा डंडा प्रोपेगेंडा जिस वक्त ही काम करता था, तो अब इसका जवाब फिर मैंने लिखा था। और वो जवाब जिस वक्त मैं लिख रहा था, और सामने वही उस दिन खुदा उनमें से एक को जन्नत नसीब कर दे, तो सुषमा स्वराज और सरताज जी साहब एक दूसरे के साथ डोजियर एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है, वो उनको बता रहे थे कि तुमने कश्मीर में ये किया, ये उनको बता रहे थे कि भाई तुमने बलूचिस्तान में ये किया। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे, जियो ब्रेकिंग दे रहा था बार बार वो डोजियर, यूं यूं लहरा रहे थे, ठीक है। सो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा। अब मुझे बिल्कुल अपनी सलाहियतों का भरपूर इदराक था और मुझे पता था कि इस गीत की एक मतलब ये उतना अच्छा है ही नहीं। तो खावर भाई जो थे वो मीडिया की एक लाइन लेंथ से वाकिफ़ थे, सो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये गीत फ़ौरन कंपोज क्या होना था, वो पड़ोसन का साउंड ट्रैक है, उन्होंने एक बंदा पकड़ा, उसने ये गीत गा दिया, हमने इसकी वीडियो शूट कर ली और शाम को अरशद शरीफ के शो में ये चल पड़ा, ठीक है। अब जब ये चल पड़ा तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मतलब मुझे इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस पे मेरी गिरफ्त होगी या मतलब मुझे शाबाश मिलेगी। तो मैं अब चुप करके बिल्कुल दम साध के बैठा हूँ। तो खावर भाई ने इसमें मजीद एक अंग्रेज़ी ऐड कर दी, तो वो उन्होंने तसल्ली सली दी, नहीं नहीं यार कुछ नहीं होगा तो घर जाके सो जा। सुबह मैं उठा हूँ तो एक और कहानी चल रही थी, तो क्लिक बेट का एक सैलाब आया था, देखिए पाक फौज के एक मेजर ने कैसा जवाब दिया, हिंदुस्तान के चक्के छूट गए वगैरह वगैरह, और शदीद वायरल, और एक और जंग लड़ी जा रही थी वहाँ पे, ठीक है, कि हिंदुस्तान को दांतों चने चबवा दिए और हमारे मेजर, हालांकि मैं आई जस्ट वांटेड टू कंसील माय आइडेंटिटी। तो अब मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गया कि भाई अब गालियाँ पढ़नी हैं, दफ्तर जाऊँगा। जेन में मैं इस्तीफे का मतन सोच रहा था कि ये वाली लाइन पहले लिखूँगा, ये वाली लाइन। उधर गया हूँ तो वो पता लगा कि मुझे ढूंढ रहे हैं दफ्तर में लोग, और किधर है मेजर हसन, किधर है? मैं वहाँ पर गया, खैर उन्होंने कहा हाँ जी, उन्होंने कहा ये तुमने लिखा है? तो मैंने कहा जी सर ये मैंने लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है यार, बिल्कुल दिस शुड बी द स्पिरिट। तो मैं अभी तक मतलब वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, आप उसमें कुछ दो चार बातें ऐसी हैं जो वाकई मैं कहना चाहता था कि कब तक बंदूक बनाएंगे, बच्चों को थोड़ा ज्ञान भी दें, ठीक, गाली देना आप छोड़ भी दो, आओ कुछ बैठ के बात करें, कब तक बंदूक बनाएंगे, बच्चों को थोड़ा ज्ञान भी दें। तो ये एक जेन्युइन सेंटिमेंट है दो मुल्कों के दरमियान, होना कभी नहीं है, बिकॉज ये हम दो मुल्कों की खसूसियत है कि हम जंग को खेल और खेल को जंग समझते हैं। तो ये है वाक्या इससे जुड़ा हुआ जो बात आपने की है, ये एक इस चीज़ का कि जो वहाँ किसान मोर्चा हुआ उसके लिए यहाँ से आवाज़ें उठी, जब यहाँ से इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी, ठीक है। इसमें अब मैं पंजाबी इस्तेमार को थोड़ा सा आपको चाहूँगा कि आप वहाँ से उठें और यहाँ आके बैठ के देखें, अगर कोई सिंध से ऐसी आवाज़ बुलंद होती, ठीक है, तो क्या हम उसको बख्श देते? नहीं बख्शते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम उन नासूदा ख्वाहिशात की तकमील देखते हैं सिखों की कोई भी तहरीक देख के, ठीक है, जो कि मतलब जैसे आमर लियाकत साहब को देख के अक्सर लोग कह रहे हैं माशाल्लाह दिस शुड बी द स्पिरिट, क्यों भाई चाहता क्या है, ठीक है। सो इसी तरह सिखों की जो भी वहाँ पे तहरीक चल रही थी वो एक बड़ी जेन्युइन तहरीक है, ठीक है। द आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन हम उसके साथ सबसे अच्छा या एहसन काम जो कर सकते थे वो इससे दूर रह के कर सकते थे कि हम उससे दूर रहते, ठीक है। लेकिन हम, और क्योंकि हमारा किसी भी तहरीक में मिल जाना उस पूरी तहरीक की सिंसैरिटी को वो कर देता है। कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हुई, जैसे कि उसमें से गीत बहुत अच्छे निकले हैं, और एक ऑर्गेनाइज एक जीत है, वो किसानों की जीत है, एक जो मिडल मैन या आड़ती है उसके खिलाफ एक जीत है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि वो जिस तरह वो कहता है ना कि पूरा पिंड भी मर जाए तेरी वारी नहीं आनी, ठीक है। तो अगर हम कुछ तवक्कुआत लगाए बैठे हैं सियासी तौर पे कि अमन, जो लोग इन बच्चों को शाबाश भी दे रहे थे टोबे और कमालिए के गीतकारों को और जो इनके गीत वायरल कर रहे थे, ठीक है, उनको अमन से या उन लोगों को ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स से कोई, अमन चाहता कौन है, कौन लोग अमन चाहते हैं, बहुत कम है, मुट्ठी भर लोग हैं, और वो भी अमन उस तरह का चाहते हैं जैसा वो, उनके नज़दीक अमन क्या है, उनके नज़दीक अमन ये है कि वो यहाँ से उठें और इस तरह का एक सेशन दिल्ली में भी कर लें बस, ठीक है। और अमन जो है उसकी कुछ नुआंसेस होती हैं, जब आप अमन की बात करते हैं किसी के साथ तो आपको उससे बराबरी देनी पड़ती है जो कि आप नहीं दे सकते, आप हाउ बेस्ट इवन इफ़ यू वॉन्ट इट यू कैन नॉट बिकॉज यू हैव बीन ग्रूम्ड इन अ वे, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके वाइप ऑफ नहीं कर सकते। क्या हमारी किताबों में नहीं लिखा बचपन में इस्लामियात की किताब, मुझे आज तक याद है कि चार वो पहलू गिनाए जिनमें हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलग कौमें हैं, और आप वो एक उसमें पॉइंट ये भी होता था कि हिंदुओं के मंदिर जो थे वो तंगो तारीख हुआ करते थे, बिल्कुल ये लफ्ज़ है मैं आपको जो सुना रहा हूँ, रट्टा लगाया हुआ था मैंने उस वक्त, ठीक है, और मुसलमानों की इमारतें खुली और कुशादा थी, ठीक। तो अब मतलब खुली और कुशादा इमारतों, ये जस्ट ऑन अ साइड लाइन मेरी बात हो रही थी, तो रेल की सीटी में एक जगह पे लिखा है कि मज़हब का जो मतलब है वो जहाबा है, रास्ता देना, लेकिन मम्लकत खुदादाद में जब भी रास्ता रोकना होता है सबसे पहले मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, कनातें लगा के ना कहते हैं यहाँ जमात हो रही, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो कनात पक्की कर देते हैं, वो जब कनात फेड हो जाती तो उसकी जगह पे वो कुछ और लगा देते, पैनाफ्लेक्स लग जाते हैं वगैरह वगैरह, सो हैंस यू ब्लॉक द वे। तो मैंने पूछा इंडिया में कि भाई आप क्या करते हैं, कहते भाजी इतने भी एन जी हों, अच्छा जी वहाँ क्या होता है, वो कहता है कि मंदिर चूँकि छोटा होता है तो इसलिए वहाँ कब्जा भी छोटी ज़मीन पे होता है और जल्दी हो जाता है। वो कहता है कि एक आदमी आके पत्थर रख जाता है, दूसरा उसके आगे दिया चलाता है, वो तीसरे वहाँ आके संगत करते हैं, और एक हफ्ते के बाद चंदा मांगने के बाद ना वहाँ पे चार दीवारी कर देते, छोटा सा मंदिर खड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा तुम गुरुद्वारे का क्या करते हो, कहते भाजी गुरुद्वारा तो बहुत बड़ा होता है, तो कहते पहले हम लंगर लगाते हैं, दो एक महीने लंगर, क्योंकि मंदिर की ज़मीन जो है वो तो दो चार छः आठ मरले में कहानी ख़त्म हो जाती है, बाकी तो एक्सेस है, गुरुद्वारे का एक पैराफिनिलिया है उसके लिए एकड़ों में कब्जा होना है, ठीक है। सो डिफरेंसेस इस तरह के हैं, हम इन चीज़ों को अब अपने बच्चों के जहन से निकाल नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज इतना वक्त नहीं है, यू कैन नॉट जस्ट रीप्रोग्राम एंड देन डीप्रोग्राम एंड देन रीप्रोग्राम, नो यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज अब आपकी बयानिए पे वैसी मोनोपोली रही नहीं, किसी नहीं रही, भले कोई कुछ कर ले जी।
ये एक इसमें ज़िम्मी सवाल ये है कि क्या ये भी तारीख का जबर नहीं है कि जो उधर के सिख हैं वो लोग बिल्कुल अब सड़कों पे आ गए हैं, अगर आप 1984 में देखें जनरल सिंह भिंडरांवाला और एक बड़ी फोर्स हुआ करती थी, तो इनके साथ
ये जर्नैल सिंह भिंडरांवाला साहब जो है बड़ी उनका एहतराम है, दूसरी तरफ मैं इस वाक़े को यहीं छोड़ के एक आपको एनालॉजी सुनाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं जो जब भी उनके सामने पाकिस्तान में लिबरलिज्म का सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि वो एक मौक़फ़ सामने आपके रखते हैं कि जिन्ना नेवर वॉन्टेड अ कंट्री लाइक दिस, ही वॉज अ वेरी लिबरल पर्सन इन हिमसेल्फ, यहाँ से बात शुरू होती अज किस्म कि वो फिर सूट पहनते थे और जो भी उनकी पर्सनल ज़िंदगी थी, इस पूरे बयानिए से वो जो बात निकालते हैं वो बात यह है कि जिन्ना चूँकि ज़िंदगी ऐसी गुजारते थे इसलिए उन्होंने मुल्क ऐसा बनाना उनके दिल में था, ठीक है, जो उन्होंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, ठीक है। तो अब यही बात हिंदुस्तान में वीर सावरकर के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं वीर सावरकर से अगर कुछ कोई वाकिफ़ आप में से नहीं है तो आरएसएस के जो भी पुराने मतलब ये ही वॉज अ फाउंडिंग फादर ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन ऑन सैफ्रॉन साइड इन इंडिया, ठीक है. सो वीर सावरकर के जो अपोलोजिस्ट हैं वो सबसे पहली बात ये कहते नहीं, वीर सावरकर तो बहुत लिबरल थे, वीर सावरकर बिल्कुल ऐसी हिंदू राष्ट्रीय नहीं चाहते थे, ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, ठीक है. अब जरनैल सिंह भंडरावाला पे आ जाइए. जरनैल सिंह भंडरावाला का जो मामला हम देखते हैं या ब्लू स्टार ऑपरेशन को जैसे हम देखते हैं, उससे पीछे एक बहुत बहुत बुनियादी बात है. वो क्या है? वो अनंतपुर का मत्ता है, ठीक है. अनंतपुर का मत्ता जो है, अगर वो वैसा हो जाता तो बात 84 के दंगों तक ना पहुंचती. अब अनंतपुर का मत्ता क्या है? अनंतपुर के मत्ता के बुनियाद एक है, किसान जो अपनी जमीन पे उगाना चाहे उसे उगा लेना, ठीक है. मुझे अगर मैं गलत बात करूं तो प्लीज़ मुझे आप माफ कर दीजिएगा. आप में से कितने लोगों को ये पता है कि पंजाब में, हिंदुस्तानी पंजाब में चोना या चावल जिसको कहते हैं, वो बाय फोर्स उगाने पे मजबूर है सिख? क्यों? बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ राइस इन इंडिया इज मच मोर देन द स्टेट्स लेफ्ट एंड राइट कैन प्रोड्यूस. सो पंजाब में जो एक फार्म होल्डर है या लैंडलॉर्ड है या फार्मर है, ही इज बाउंड टू ग्रो वट एवर द स्टेट टेल्स हिम, ठीक है. तो वो इस अटोनमी, और फिर पानी का मुद्दा है, ठीक है, पानी का मुद्दा है. वो कहते हैं कि आप इंदिरा कैनाल निकाल. अब ये देखें कितनी नुएंस्ड गुफ्तगू है, ये इतनी सिंपल नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जरनैल सिंह भंडरावाला जो था वो मज़ाहमत की अलामत था और हमने उसको मार दिया. ये पानी की तकसीम है, क्योंकि वो कहते हैं कि पानी हम तक पहुंचता नहीं है, आप इंदिरा कैनाल में डाल के नीचे दे के जा रहे हैं राजस्थान तक. तो हमें, लेकिन वो अब सुकून है तो भूलने में है, लेकिन उस शख्स को भुलाए कौन? अब पढ़ना बिलमूम और बिलखसूस हम चाहते नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि बयानिए कि जो डोज हमें सूट कर रही है उसके साथ हम बैठ के हाथ सेक लें.
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद है.
नवीद ताज गौरी.
नवीद ताज गौरी नाम है मेरा. और सवाल मेरा ये है कि जो तकसीम हमने देखी ये मज़हब की बुनियाद पर जिसका दावा किया जाता है वो हो गई, उस तकसीम का कर्ब आपने बयान किया और बहुत सारे और लोगों ने बयान किया, उसके बाद फिर एक तकसीम और हो गई और वो कौमियत या ज़ुबान के नाम पे हो गई. तो आप बाकी मामलात भी आपके सामने, आप कोई ज़्यादा होपफुल भी नहीं है, और कुछ हम अब जिस टीयर पे हम हैं हम लोग भी कुछ ज़्यादा होपफुल नहीं है बहुत सारे मामलात को लेके. लेकिन ये तकसीम जब नज़रिए की बुनियाद पर होती है तो ये रुकती नहीं है, तो आप कितना देखते हैं कि कितना कि इनएविटेबल है कि जो मजीद तकसीम आप प्रेडिक्ट करते हैं कि कौमियत की या ज़ुबान की या किसी भी बुनियाद पर?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें जी, आप पोस्ट लगाएं आज, आप इसका फर्स्ट हैंड ये आप सेकें जो है आग लगा के, आप लिखें कि पंजाबी सूबा अलग होना चाहिए. नीचे आपको 2 मिनट में पहले 8 कमेंट्स में आ जाएगा सरायकी भी अलग होने चाहिए, ठीक है. सो सरायकियों के बाद ये बहस शुरू हो जाएगी कि भाई वो साउथ के सरायकी ज़्यादा है या मतलब नॉर्थ के सरायकी ज़्यादा बेहतर है. फिर थोड़ी देर के बाद खानपुर कटोरा वाले अलग हो जाएंगे और रहीमियार खान वाले अलग हो जाएंगे. उसके बाद मामला घूमता घूमता सलार वाला टोबा और किड़ वाला टोबा पे आ जाएगा. वो कहेंगे हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी अपनी ज़ुबान है. तकसीम जो है वो एक दफ़ा जब ये इसका ये वो क्या है, बटरफ्लाई इफेक्ट है, जब ये काम एक दफ़ा शुरू हो जाता है ना. और ऐसा नहीं है कि वो जो लोग थे अबुल कलाम आज़ाद साहब वो बहुत विजनरी थे, नहीं. लेकिन उन अगेन फिर बात घूम फिर के दास्तान पे आ जाती, ठीक है, कि वो जो है मैं बहुत तल्ख सवाल का जवाब घुमा के कहानी में देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. उन लोगों ने ये अपनी दास्तानों से या पढ़ के अपने मुताले से ये सीख रखा था कि जब एक दफ़ा तकसीम शुरू हो जाए तो फिर वो तकसीम दर तकसीम होती है, वो रुकती नहीं है, ठीक है. अलिफ लैला की जो कहानी है उसमें शहरयार जो है वो इसलिए शहरजाद को मारता है, आप लोगों को इल्म होगा, शहरयार का मतलब शहर का दोस्त, शहरजाद का मतलब शहर की बेटी, ठीक है. वो हर रोज़ एक औरत को मारता है, उससे शादी करता है, उसे मारता है अनटिल औरतें ख़त्म हो जाती हैं. और वज़ीर की जो बेटी है वो अपने आप को वॉलंटियर करती है कि मैं जाऊंगी, और वो फिर उसको कहानी सुनाती है. आधी कहानी रोक के वो कहती है अब भाई फजर का टाइम हो गया, ठीक है. तो इस तरह वो एक 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 करके इस तरह 1000 कहानियाँ शुरू होती हैं, ठीक है. अब मैं आपको एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ लेके जाता हूँ. ये एक हिंदी दास्तान है, मतलब ये वो प्राणों की एक कहानी है कि एक ब्राह्मण जो है वो बहुत तपस्या करता है तो उसको एक देवता फल दे देता है, ये फल तू खाएगा तो अंत तेरे पास नहीं, तेरा अंत नहीं होगा, बेअंत रहेगा तू, ठीक है, मौत से तुझे मुक्ति मिल जाएगी, मृत्यु से। वो ब्राह्मण जो है वो घर लेके आता है, ठीक है। सो आपको अंदाजा होगा कि बेगमात की अहमियत कहानियों में भी है, बेगम को देता है और बेगम वही बात कहती है जो अभी सुबह मेरी बेगम ने कहा, क्या लाहौर क्यों जा रहे हो, घर बैठ जाओ वगैरह। उसने कहा तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, ये फल तुम उठा के ले आए हो, हमें फल नहीं चाहिए, हमें तो अंडे डबल रोटी दही वगैरह चाहिए, वो तुम लाए हो। तो बहरहाल वो कहती है कि ये हमारे किस काम का है ये फल, तुम ये फल बादशाह को दो और बादशाह से इसके एवज कुछ रुपए ले लो। तो वो जो ब्राह्मण है वो जाता है बादशाह के पास और उसे कहता है कि महाराज ये आप फल ले लें, इससे आपकी मृत्यु जो है वो टल जाएगी, अलबत्ता मुझे आप कुछ लक्ष्मी दे दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो बादशाह को बात अच्छी लगती है, बादशाह उससे फल ले लेता है और कहता है इस ब्राह्मण को अशरफियों में तोल दो। ब्राह्मण पैसे लेकर घर चला जाता है और बादशाह फल लेके अपनी रानी के पास आता है। वो रानी को कहता है कि ये फल तुम ले लो, तुम मुझे उसने दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तो जैसा ही, मेरे जैसा कोई बादशाह था, उसने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम बस इसी तरह खूबसूरत मुझे दिखाई देती रहो और तुम ऐसी रहो, मेरी खैर है। रानी फल रख लेती है। रानी का अफेयर चल रहा है कोतवाल के साथ, ठीक। रानी वो फल कोतवाल को नज़र बचा के दे देती है, तो रानी को भी सच्चा प्यार नहीं मिला तो इसलिए वो कोतवाल को दे देती है। कोतवाल को कहती है कि ये फल तुम रख लो, ठीक है, मेरा क्या है, मैं अर्पण करती हूँ, तुम ये फल रख लो। कोतवाल वो फल अपने पास रखता है। कोतवाल का सिर्फ रानी से चक्कर नहीं चल रहा, उसका कुछ उधार शहर की बेसवा के पास भी है, ठीक है। तो वो उस तवायफ को बुलाता है और उसको कहता है कि वो जो तुम्हारा उधार मैंने चुकाना था ना, वो तो मैं अब नहीं चुका सकता, तो तुम ऐसा करो कि ये इन कैश इन काइंड की बजाय ना ये इस पे पेमेंट सेटल कर लो। वो उसको फल दे देता है। वो फल तवायफ ले आती, तो वाइफ कहती है कि मेरा जिस तरह का ज़िंदगी है और मेरे जिस तरह के कर्म हैं, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं इसी कलयुग में कलयुग काटूँगी, इसलिए मैं ये ऐसा करती हूँ, मैं ये राजा को दे देती वो फल लेके राजा के पास जाती है और कहती है महाराज जी आप, मैं उस तरह का तो नहीं, आपकी जंग नहीं लड़ सकती, मुझे शास्त्र चलाना नहीं आता, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका राज जो है वो टका रहे और फल आप ले लें। बादशाह जो है वो फल पहचान लेता है और वो राजा जो है वो उसके बाद दुनिया से सख्त बेजार हो जाता है और वो वनवास ले लेता है और रानी को छोड़ देता है, उसका सर कटवा देता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि बादशाह के साथ ये ट्रेचरी होती है बुनियादी तौर पे और वो इधर निकलता है। यही काम शहरयार के साथ हुआ है, क्योंकि शहरयार जो है उसका भाई एक अपनी बीवी के हाथों दगा उठाता है और उसके पास आता है, तो शहरयार जो है अपने भाई को समझाता है कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती, ठीक है, मेरी जो बीवी है वो मुझसे बड़ा प्यार करती है, तुम्हारा कुछ ध्यान बढ़ जाएगा, तुम मेरे साथ शिकार पे चलो। शहरयार अपने छोटे भाई को लेके शिकार पे बाहर जाता है तो उनको याद आता है कि कुछ ज़रूरी सामान वो महल में भूल आए। वो बादशाह का भाई जब पीछे जाता है सामान लेने तो देखता है कि जो मलका है वो एक ग़ुलाम के साथ अपना एक अफेयर चला रही है। वो भागा भागा वापस आता है और उसी तरह बादशाह को लेके जाता है। बादशाह देखता है अपनी आंखों से तो वो चीट कर रही है और बादशाह उसी रात उस औरत को कत्ल कर देता है और वो भी इस तरह अपना तख्त ताज जो है वो निकल जाता है दे के। तो फिर उसको भाई समझाता है कि तख्त ताज छोड़ना कहाँ की अकलमंदी है, बेहतर यह है कि तुम औरतों को ख़त्म कर दो एक एक करके। एंड हैंस हमारे पास अलिफ लैला पहुँचती है, ठीक है। और अलिफ लैला में अब आप अगर पैटर्न नोट कर लें तकसीम दर तकसीम, ठीक है, और वायलेंस एक दफ़ा इंट्रोड्यूस हो जाए इसकी एक बहुत अगर आप माइक्रो लेवल पे मिसाल देखें, आप अपने घर में जब पहली दफ़ा बच्चे पे हाथ उठाते हैं तो आप देखें 6-8 साल के बाद आपका बच्चा छोटे बच्चे को उसी टोन में मार रहा होगा, क्योंकि आप वायलेंस एक दफ़ा इंड्यूस कर देते हैं ना, वो फिर आप यू कैन नॉट टेक इट बैक। हमने जब तकसीम भी एक वायलेंस है, आपने वो वायलेंस इंड्यूस कर दिया, नाउ यू कैन नॉट टेक इट बैक। अब ये वायलेंस मल्टीप्लाई होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। यू कैन ऑल यू कैन डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स इफ यू कैन, दैट्स इट।
ठीक, मेरे ख्याल में अगर कोई सवाल नहीं है तो हमारे पास 10-15 मिनट हैं आखिरी, और अगर आपको मुश्किल ना हो तो अगर हमें कोई आप कुछ और कहानी सुना दें, कुछ पढ़ दें।
अच्छा, एक छोटी सी चीज़ अभी मैं अयास था आपको मैंने देखा तो मुझे याद आ गया, वो लोग किसी भी माशरे में बहुत अहम हैं, जो मैं ये बेताल पचीसी ढूंढना शुरू हुआ तो मुझे पता लगा कि भाई ये किताब तो बहुत मुश्किल से मिलती है। एंड पे किसी ने बताया कि इंतज़ार हुसैन साहब ने ये इन किताबों के बारे में काफ़ी काम किया। जब मैं इंतज़ार हुसैन साहब के लिए कई हवाले से लिखा पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे पता ये लगा कि इंतज़ार हुसैन साहब ने बिल्कुल बरसबील तस्करा एक दोस्तों की महफिल में जिक्र किया था नियाज अहमद साहब से कि इस तरह की एक किताब है बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी, ये जो किताबें हैं ये हिंदी की बेहतरीन कहानियाँ हैं और इनको प्रिजर्व होना चाहिए लेकिन कोई यहाँ काम नहीं करता। तो नियाज अहमद साहब ने उस वक्त इंतज़ार साहब के ज़िम्मे ये काम लगाया है कि अब तुमने चूँकि बात की है तो तुम ही ये कहानियाँ मुरतब करोगे। तो अगर आज ये किताबें हमारे पास पहुँची, और ये एक मौजज़ा है कि हमारे पास पहुँच गई हैं, वरना मतलब बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ये किताबें, ये और इस दौरान उन्होंने इंतज़ार साहब ने ये भी लिखा है कि नियाज अहमद साहब जो थे वो खुद चाहते थे कि ये कहानियाँ जो हैं ये हम तक पहुँचें और हम इनको किसी ना किसी तरह उर्दू में आर्काइव कर लें। आप ये देखेंगे ये कहानियाँ सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज ने इनको कंपाइल किया था, ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद ये काम नियाज अहमद साहब ने किया। तो वैसे द क्रेडिट गोज़ टू नियाज अहमद साहब एंड फिर अफजाल साहब जिन्होंने ये किताबें पब्लिश की हैं ताकि ये किताबें हमारी एक्सेस में हैं, वरना ये ख़त्म हो जाती तो आपके पास जो वर्जन है, जैसे मैंने पहली दफ़ा बेताल पचीसी जो है वो इसकी वीडियो स्टोरीज देखी थी जो कि इंडियन जो चैनल्स हैं उन्होंने बहुत बुरी एनिमेशन के साथ अपने बच्चों के लिए, जैसे हमने प्रॉफिट स्टोरीज बनाई होती हैं अपने बच्चों को सुनाते हैं, वैसे उन्होंने ये कहानियाँ सुनाई हुई हैं, लेकिन उन कहानियों में ज़ुबानो बयान की और ज़ाहिर है वो एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि इनमें से निकल गया है वो इसमें मौजूद है। तो अगर आई एम पर्सनली ग्रेटफुल टू इंतज़ार हुसैन साहब ऑन दिस पॉइंट बिकॉज ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, इनके अंदर ऐसे ऐसे लेसन्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही पढ़ रखा था, ठीक है। मैं मिर्ज़ा साहब सुना लूँ अगर आप जाएंगे। ये दानाबाद है एक छोटा सा गांव, मगर बार के इलाके में ये मोहब्बत करने वालों की एक निशानी भी है। यूं तो मिर्ज़ा साहिबां का किस्सा बहुत सी फिल्मों ड्रामों और नाटक कहानियों का माखज़ है, मगर क्या कीजिए, इस वार में कुछ ऐसा ज़रूर है जो सुनने वालों को हर बार नई सतरंगियां दिखाता है। दानाबाद खरलों का गांव था, खुदा की करनी से खरल सरदार वंजल के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मिर्ज़ा खान रखा गया। करीब करीब इसी दौरान एक दूसरे गांव में खेवा सरदार माणी खान के यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम साहिबा रखा गया। कुछ रिवायतों में मिर्ज़ा की माँ माणी खान की बहन बताई जाती है और कुछ कहानियों में साहिबा की माँ मिर्ज़ा की खाला। अब ये रिश्ता माँ मौसी का था या बाप बुआ का, बहरहाल माँ के इंतकाल के बाद हालात की किसी करवट ने मिर्ज़े को साहिबा के घर रहने की गर्ज से भेज दिया। हरियाणा से वैंकूवर और फतेहगढ़ से विक्टोरिया तक आज भी जब इस खेल को पर्दे पे पेश किया जाता है तो इसमें दो मंजर ज़रूर शामिल होते हैं। पहला मंजर एक मकतब का है जहां मौलवी साहब बच्चों को अलिफ लिखने का कहते हैं और साहिबा की तख्ती पे अलिफ के बजाय मिर्ज़ा का नाम उभरता है। मौलवी साहब सज़ा के तौर पर साहिबा को बैद मारते हैं तो निशान मिर्ज़ा की कमर पर पड़ते हैं। दूसरा मंजर कराड़ की हट्टी का है जहां साहिबा के हुस्न से मबहूत दुकानदार तराजू के सब भाट भाव भूल जाता है और तेल की जगह शहद तोल देता है। बाबा कहते हैं कि औरत की खूबसूरती हैरत का एक लम्हा है जिसमें मर्द बस कैद होकर रह जाता है। इश्क की ये दास्तान मदरसे की मजलिस से निकली, कोठों चढ़ी और मोहल्लों तक पहुँच गई। मिर्ज़ा इस दौरान वापस दानाबाद चला गया और साहिबा की नस्बत किसी और जगह तय कर दी गई। घर में शादी के मेहमानों की आमद लगी तो साहिबा ने करमू बहमन को बुलाया और मिर्ज़े की दोस्ती का वास्ता देकर दानाबाद जाने के लिए राज़ी किया। مہندی لگے ہاتھوں سے لکھا ہوا یہ پیام مہندی لگی لکیروں کے خلاف تھا. کرموں منزلوں پہ منزلیں مارتا دان آباد پہنچا اور مرزے کو بتایا کہ اگر دیر ہو گئی تو صاحبہ کی مہندی کسی اور ہاتھ اترے گی. اس دن گھر میں ونجھل کی بیٹی کا بیاہ رچا تھا. بہن کی رخصتی سے پہلے مرزا نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا. بکی کو ایڑ لگائی تو سارا گھر اکٹھا ہو گیا. ماں اور بہن نے واسطے بھی دیے اور تاریخ کے حوالے بھی, مگر عشق ایک ایسا اندھا پن ہے جو حقیقتوں کو بصارتوں سے پرے کرنے پہ قادر ہے. مرزا کھیموں کے گاؤں پہنچا تو بیبو سے مدد مانگی. رشتے کی اس خالہ نے رسی کی سیڑھی بنائی اور پھول کی شاخ ایسی صاحبہ سکھیوں کے کمرے سے گھوڑے کی پشت پہ آن ٹکی. ڈھولک کی اٹھتی تھاپ دھیرے دھیرے سموں کی گرتی ٹاپ میں گم ہو گئی. مرزا صاحبہ کی داستان بکی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. پیلو نے اس گھوڑی کا تعلق حضرت علی کے دلدل, گگے چوہان کی ہک, راجہ رسالو کے نیلے, دلے بھٹی کی لکھی اور راجہ جیمل کے سندل سے جوڑا ہے. کچھ اور لکھنے والے بکی کا سلسلہ دسویں گرو گرو گوبند سنگھ کے گھوڑے سے بھی جوڑتے ہیں, اور کچھ کہانی کار اب شاہی قلعے میں فرستادہ رنجیت سنگھ کے گھوڑے کو بھی اسی نسل کا بتاتے ہیں. انہی نسلوں کا بوجھ لیے بکی معاملے کی نزاکت سے آشنا تھی, لہٰذا اپنے سواروں کی سلامتی کی خاطر اس نے پہلا پڑاؤ دان آباد کے نواح میں موجود بوڑھے برگد کے تلے جا کر ہی کیا. سختی, رزق اور چوٹ مقدر کی بات ہے. سو مرزا رک گیا اور دان آباد کو سامنے دیکھ کر کھیووں کی طرف سے مطمئن ہو گیا. اس کو گھر بھی نظر آ رہا تھا اور گھر سے اٹھنے والی بہن کی ڈولی بھی. یہ وہی بہن تھی جس نے جاتے جاتے بکی کی راسیں تھام کر اسے سیالوں کی خطرناک عورتوں سے آگاہ کیا تھا. جاٹ بہنوں کے معاملے میں ڈرپوک واقع ہوتے ہیں. سو مرزے نے مناسب سمجھا کہ جب بارات جا چکے گی تو وہ رات کی تاریکی میں دان آباد پہنچے گا. اس کی آنکھ لگ گئی اور صاحبہ جاگتی رہی. بوڑھا برگد خاموش ہوا تو گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں. خان شاہ میر کے گھوڑے دور سے پہچانے جاتے تھے اور سوار بھی انجان نہ لگتے تھے. سیالوں کی خطرناک عورت نے دم بھر کو سوچا کہ اگر یہ میرے بھائی ہوئے تو مرزے کے تیروں سے نہیں بچ پائیں گے اور کھیووں کی نسل کھرلوں کے تیروں کی نظر ہو جائے گی. وہ ایسا نہیں چاہتی تھی, سو اس نے کمان درخت سے لٹکا دی اور تیر توڑ دیے. بھائیوں کے گھوڑے عین سر پہ پہنچے تو صاحبہ نے مرزے کو جگایا. مرزا کو اپنی تیر اندازی پہ بڑا مان تھا, مگر جب تیر انداز کی نظر ٹوٹے ہوئے تیر اور ٹنگی ہوئی کمان پہ پڑی تو اس کا دل ٹوٹ گیا. اب کچھ کہتے ہیں کہ مرزا خان شاہ میر کے تیروں سے پہلے صاحبہ کی بے وفائی پہ جان ہار بیٹھا تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوصف جب تیر ترازو ہوئے تو مرتے ہوئے مرزا کے ہونٹوں پہ کلمہ نہیں صاحبہ کا نام تھا. بتیاں گل ہونے سے پہلے گرتی ہوئی صاحبہ بھی نظر آتی ہے, اور جس وقت پردے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پیلو کے الفاظ سیدھے دل میں اترتے ہیں. مندا کی تو صاحبہ میرا ترکش ٹنگے ہوئی جانڈ, سر تو منڈاسا اڑ گیا گل وچ پیندی چانڈ, باج پراواں جٹ ماریا کوئی نہ مرزے دے سنگ جٹائی ہو. ترجمہ: صاحبہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ میرا ترکش درخت پہ لٹکا دیا. مرزا کے سر سے پگڑی اتر گئی اور چہرے پہ دھول پڑنا شروع ہو گئی. جاٹ کو بغیر بھائیوں کے مار دیا جب اس کے سنگ کوئی نہ تھا. پیلو کے علاوہ مرزا صاحبہ کی کہانی احمد شاہ مجیٹھوی نے بھی بیان کی ہے. آر سی ٹیمپل نے بار کے کئی بھاٹوں سے اس کہانی کو سنا اور اسے کتابوں میں محفوظ کر لیا. مرزا صاحبہ کی قبر کے علاوہ دان آباد میں ایک اور روایت بھی ہے. صاحبہ کے بعد سیالوں کی ہر نسل میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جو عین جوانی میں محبت کرتی ہے اور پھر مر جاتی ہے. پٹڑی کے اس پار جھنگ میں یہی بات ہیر کی بابت مشہور ہے.
ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. میں ہمارے مہمان کا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ تمام لوگوں کا شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے.